एवं इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा पहले कहा गया है। मथुरा की स्त्रियां मथुरा की और मथुरावासियों की निंदा कर रही हैं, हमारा जन्म ठीक नहीं है, वास्तव में भूमि धन्य है तो ब्रज भूमि और वहां के वासी धन्य है, और उसमें भी श्री गोपियां, गोपियों के सौभाग्य का वर्णन करते हुए इस तरह मथुरा नगरियां डर रही थी कि चारुण मुष्टिक आदि पहलवान बड़े ही कर्कश शरीर वाले हैं, वज्र की तरह हैं, और कृष्ण बलराम ये दोनों कुमार फूल जैसे सुकुमार हैं। ये बड़ा अन्याय हो रहा है, इस सभा में रहने लायक नहीं है, यहां से जाना चाहिए, सभा के लोगों को निश्चित नरक मिलेगा, बहुत बड़ा दुख आएगा, ये पाप हो रहा है कृष्ण बलराम को यहां पर लड़ाना। इसकी याद करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं इस प्रकार, जो पहले के श्लोकों में बात कही गई है वो सब बातें याद करनी चाहिए। प्रभास माणासु स्त्री सु हे भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित, ये संबोधन है। स्त्रीसु एवं प्रभास माणासु, मथुरा की स्त्रियां जब इस प्रकार से आपस में बातें कर रही थी, भाषण कर रही थी, तो श्री भगवान जो सर्वज्ञ हैं और जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, वे स्त्रियों के हृदय में हैं, उनके हृदय में जो शोक की लहर दौड़ रही थी भगवान ने तुरंत समझ लिया। हमारी किशोर अवस्था देखकर, हमारी सुकुमारता मृदुता और इन पहलवानों के कठिन पर्वत जैसे शरीर को देखकर ये बहुत डर रही है, बहुत भयभीत हो गई है, इसलिए यहां पर योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सबके हृदय की बात जानते हैं, योगियों के योग के ईश्वर योगेश्वर। तो श्री भगवान है जो सबके हृदय में ही रहते हैं, स्त्रियों के इस भाषण को सुन करके ऐसा नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इस भाषण से जोगेश्वर हरि शत्रुहंतु मनश्चक्र, शत्रु चारुण को मारने का मन कर ले, संकल्प कर ले कि अब इसको मारना है। मल्ल युद्ध हो रहा था, बहुत खींचा तानी और बाद में बहुत मुक्के से मारना, घूसा से मारना, हट हट करके और पैंतरा ले लेकर के बहुत मार कर रहे थे दोनों। तो श्री भगवान जो करुणा स्नेह दया आदि गुणों से परिपूर्ण है, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान। कृपा भी एक भाग है, जो कृपा से युक्त हैं, स्नेह से युक्त हैं, विशेष करके अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, ऐसे प्रभु और हरि जो स्वभाव से ही परम मनोहर हैं और अपने भक्तों का दुख हरने वाले हैं, वे हरि जान गए स्त्रियों के हृदय के दुख को, उनके शोक को, और उस शोक का विषय क्या था, श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण की इस रंगभूमि में इस प्रकार पराजय हो रही है, पराभूत हो रहे हैं, यही लड़का जब वृंदावन में रहता है तो कितना आनंद में बांसुरी बजाता है, खेलता है, गाय चराता है, आज इसकी ये दशा हो रही है भाई के साथ, इस शोक में पड़ी होते, इसको भगवान समझ गए। क्यों? क्योंकि जोगेश्वर हैं, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। स्त्रियों के हृदय के दुख को भगवान स्वयं ही समझ गए। योगेश्वर अर्थात सर्वज्ञ शिरोमणि, सब कुछ जानने वालों में भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, और भगवान हैं करुणा आदि अशेष गुणों से संपन्न हैं, हरि स्वभाव से ही अपने भक्तों का दुख हरते हैं, तो वे शत्रु को मारने का मन बना लिए। मनश्चक्र, मनश्चक्र का अर्थ है कि मन में ठान लिए कि अब इसको मारना है। अब अधिक देर तक भगवान स्त्रियों के दुख को देखने में समर्थ नहीं थे। यहां पर इस श्लोक के भावार्थ में हरिश्रु जी कहते हैं, मिथ्या भूतो पिनय वास्तु क्लेशो मत प्रेम चेतसाम इति हंतुम सचारुणम आयसित श्रुत तदुक्त गीह। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि अपने भक्त के मिथ्या क्लेश को भी नहीं सहन कर सकते। मथुरा की नगरियों में जो क्लेश हो रहा था, क्लेश एक ये था, वो मार रहा था बार बार अपने वज्रोपम शरीर के द्वारा, पर्वत के समान शरीर के द्वारा कठिन घुसा कठिन मुका चला रहा था सब तरह से। कभी श्रीकृष्ण के बांह को मरोड़ने लगता था, कभी गर्दन को मरोड़ता था, ऐसे ऐसे। तो यद्यपि श्रीकृष्ण को इसमें कोई कष्ट नहीं है, वो तो अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, पर लीला कर रहे हैं प्रभु, परंतु कृष्ण के प्रति जिनके हृदय में प्रेम है, स्नेह है, वे कृष्ण को निर्बल समझते हैं। विशेष करके मथुरा की स्त्रियां कभी कभी लीला में ऐसा करते भी थे, जब मल्ल युद्ध में मुक्का मारता था तो देह ऐंठता था तो श्रीकृष्ण आह आह ऐसे करते थे, इससे स्त्रियों का और सुख बढ़ता था। भगवान कृष्ण के विषय में कुछ सोच करके शोक होना, यह एक वास्तव में परम आनंद है, अन्यथा भगवान क्यों शोक देते हैं। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या से चले वनवास के लिए राज्य त्याग करके, उसी दिन उनका राज्य तिलक होने वाला था और उसी दिन वन में जाना पड़ा, और भगवान राजकीय वस्त्र सब उतार दिए, मुकुट उतार दिए और तपस्वी का भेष बना करके जंगल जाने लगे। उस समय अयोध्या के लोगों में जो शोक उमड़ा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माताएं रो रही थी, प्रजा रो रही थी, सब हाहाकार कर रहे और भगवान जा रहे थे। तो ऐसा दुख है, ऐसा शोक उन्होंने क्यों दिया अपने भक्तों को? कृष्ण के विषय में सोच करके जो दुख होता है वो दुख नहीं है, वो परम सुख है। पर फिर भी भगवान का ऐसा स्वभाव है कि मिथ्याभूत क्लेश को भी वे सहन नहीं कर सके। भगवान ने विचार किया, वो मेरे लिए इस तरह से व्याकुल हैं, रो रही हैं, तब इस दुष्ट को अब मारना चाहिए। तुरंत मन बना ले, मनश्चक्र, शत्रुम हंतुम मनश्चक्र। शत्रु से तात्पर्य है यहां पर चारुण, तत्काल अर्थ ये है, और उसके साथ साथ सल तो सल, और उसके साथ ही साथ कंस, कंस भी शत्रु है ना, जितने और भी पहलवान थे और कंस के भाई थे, सबको मारने का मन में कर लिए, मनश्चक्र संकल्प कर लिए, अब अधिक देर तक इन स्त्रियों को दुख नहीं दूंगा। तो प्रभास मानस, वो लोग बोलती ही जा रही थी कृष्ण के विषय में, प्रकर्षण भास मानस, इस प्रकार से अनेक उद्गार बोल रहे थे, तो भगवान मन बना लिए। और उधर उपश्रुत्य गिरह स्त्रीणाम पुत्र स्नेह सुचात। स्त्रियों के भयपूर्ण वचन को सुनकर देवकी और वसुदेव पुत्र शोक में व्याकुल हो रहे थे। उनको लाया गया था रंगशाला में, देवकी और वसुदेव को, जैसे जेल में रहने वाले को कभी कभी कोर्ट में हाजिरी देने के लिए बुलाया जाता है, लोग जाते हैं हाजिरी देने के लिए कोर्ट में जेल से निकलकर। इसी तरह से एक फेस्टिवल चल रहा है तो कंस देवकी और वसुदेव को ये उत्सव देखने के लिए बुलाया था। उसके मन में इतना द्रोह था कि जिस वसुदेव ने मेरे साथ दगाबाजी किया है, इतना कुटिल हृदय, पुत्र देने की प्रतिज्ञा किया और पुत्र जब आठवां हुआ तो लेकर के नदी पार कराया, ये दुष्ट अपने पुत्रों का मरण अपने आंख से देखे, इसलिए बुलाया था। देवकी वसुदेव ही आए थे और स्त्रियों की बात को जब वे सुने तो रोने लगे, बहुत दुखी हो गए। पुत्र स्नेह सुचातुर, अपने पुत्रों के स्नेह में बिल्कुल आतुर हो गए, व्याकुल हो गए। आतुर का है अर्थ है कि मां देवकी लगी रोने, फक फक कर रोने लगी और मुंह ढक करके, और वसुदेव जी और नंद बाबा ये भी व्याकुल हो गए। यहां पितरों का अर्थ है वसुदेव जी और नंद जी, अथवा देवकी और वसुदेव और नंद सभी, ये इनका पुत्र भाव है, इनको कृष्ण शिशु जैसे दिख रहे थे, ये बिल्कुल व्याकुल हो गए। पितरों अनुतप्यता में अनुतप्त हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि पुत्रयो रबुधौ बलम, अपने पुत्रों के कृष्ण बलराम के बलम अबुधौ नहीं जानते थे, अज्ञ हैं। कृष्ण बलराम के बल को ये नहीं जानते हैं, केवल उनकी सुकुमारता बालोचित लीलाएं ही याद आती रहती थी, तो इसलिए वो व्याकुल हो रहे थे, मूर्छित से हो रहे थे। कृष्ण बलराम के प्रहार को देख करके और पहलवानों के प्रहार और स्त्रियों के सभय वचन, कुछ आचार्यों का कहना है कि देवकी और वसुदेव को वहां लाया नहीं गया था, वो निकट ही रंगभूमि के पास ही थे और वो सुन रहे थे, आवाज सुने, क्योंकि यह देखने का वर्णन नहीं आया। अथवा ये भाव है कि कृष्ण बलराम को इस तरह पराभूत होते हुए देख करके वे जी नहीं सकते थे, अतः केवल सुनने का वर्णन किया जा रहा है। स्त्रियों के सभय वाणी को सुनकर देवकी वसुदेव अति विवल हो गए, दुखित हो गए, शोक में डूब गए। तो स्त्रियों के भयभीत वाणी को सुनकर के उनको सुख देने के लिए और अपने माता पिता देवकी वसुदेव का दुख हरने के लिए श्री भगवान ने चारुण को मारने का संकल्प कर लिया। अब तक तो लड़ रहे थे, लगभग दोनों बिल्कुल जोड़ा जोड़ ठीक थे, जोड़ी ठीक थी, कोई परास्त नहीं हो रहा था, कोई विजयी नहीं हो रहा था, निर्विशेष युद्ध चल रहा था। लेकिन अब भगवान सोच ले मारने का, तो इसमें दो कारण था, स्त्रियों का भय और माता पिता का दुख, क्योंकि जोगेश्वर है सब समझ गए, और देवकी वसुदेव के लिए या नंद वसुदेव के लिए बात कही जा रही है कि पुत्रयो हो बलम अबुधौ, अपने दोनों पुत्र के बल के विषय में एकदम अनभिज्ञ थे। स्वरूप शक्ति ऐसी है भगवान की, चित शक्ति, जो उनके परिकरों को इस तरह मोहित करती है। परिकरों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान को भी अज्ञानी बनाती है जोग माया। भगवान भी रोते हैं मां यशोदा के डर से कि हमें बांधेगी बांधेगी, तो नाटक नहीं कर रहे हैं, सचमुच रो रहे थे। इस बात को माता कुंती ने अपने आंखों से देखा है। वो दीपावली के दिन गई थी गोकुल, अपने आंख से देखा है कृष्ण को रोते हुए, तो कहती है कि यह कोई अभिनय नहीं है, सचमुच आप भयभीत थे। तो भगवान को भी योग माया, भगवान की चित शक्ति, स्वरूप शक्ति अपने ऐश्वर्य से अनुसंधानहीन कर देती है। तो फिर देवकी वसुदेव को कृष्ण के ऐश्वर्य से, के ऐश्वर्य के अनुभव से शून्य कर दे, इसमें क्या आश्चर्य। अगर इसका मतलब जो बल जानते तो नहीं विकल होते, बल नहीं जानते हैं इसलिए विकल हो रहे हैं अबुद्धव। युद्ध चल रहा था, युद्ध का थोड़ा वर्णन करते हैं। तैस्तैर नियुद्ध विधिभीर विविधै, तैस्तैर नियुद्ध विधिभीर उभौ चारुण केशवौ युयुधाते जथानन्यम तथैव बलमुष्टितौ। इस तरह विविध प्रकार से वे युद्ध कर रहे थे, युद्ध के जो भी प्रकार हो सकते हैं बाहु युद्ध के, वे सब कर रहे थे। मारना, झटका देना, शरीर को दबाना, उठाना, मड़ोरना, तोड़ने की चेष्टा करना, नाना प्रकार से, जैसा पहले वर्णन हुआ था। ये भिड़े हुए थे चारुण और केशव, चारुण और कृष्ण, और उधर जैसे ये भिड़े हुए थे वैसे अन्योन्यम तथैव बल मुष्टिक, ऐसे ही बलदेव जी और मुष्टिक ये दोनों दौड़ रहे हैं। अब जब भगवान ने मारने का विचार किया तब वर्णन करते सुखदेव जी, भगवद गात्र निष्पातैर वज्र निष्पेष निष्ठ रहे। अब श्री भगवान ने चारुण को मारना चालू किया, जब मुक्का मारना चालू किए या पैर से मारना चालू किए, इसके लिए सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के जो गात्र हैं, अंग हैं, इनका निष्पात होने लगा। निष्पात कहते हैं नितराम पात, अब खोल करके मारना चालू किए चारुण को, और भगवान के अंगों का आघात जो था वो वज्रपात के समान निष्ठुर था, जैसे किसी पर वज्रपात हो जाए। जब मुक्का मारते थे, कोई अंग संचालन करते थे, तो चारुण को यही अनुभव हो गया कि वज्र गिर रहा है, वज्र गिर रहा है, निष्ठुर, बहुत कठोर। अब भगवान ने बल अपना आविष्कृत किया, मारने का जब मन कर लिए तो पहले खेल रहे थे, मल्ल युद्ध का स्वादन कर रहे थे, अब मारने का मन बना लिया। तो वज्र निष्पेष निष्ठुरै भगवतः कृष्णस्य गात्र निष्पातैः रत्नी द्वारा दिप्रहारै, रत्नी द्वारा प्रहार ये है, ऐसे मारना, ऐसे मारना, ऐसे मारना, इसको कहा गया है ये वज्र निष्पेष निष्ठुरै। वज्रस्य निष्पेषः तीव्र प्रहारः, निष्पेष का अर्थ है प्रहार, बट तीव्र प्रहार, जोर से मारना, इसको निष्पेष कर। तो ये निष्पेष कैसा था, जैसे लगता था कि चारुण के शरीर पर वज्र गिर रहा है, चाहे कंधे पर या पीठ पर या हाथ पर, जहां छाती पर, वज्र के आघात जैसा हो रहा था। और इसके कारण है चारुण भज्यमानांग, भज्यमानांग, भज्य का अर्थ है विभाजित होना, शरीर जो इतना गठीला था अब वो ढीला पड़ने लगा, जहां कृष्ण मारते थे शरीर टूट जाता था, इतना कड़ा मार रहे थे, उसको भज्यमान कहते हैं, जैसे लगा अब अलग अलग हो रहा है, चमड़ा जुटा हुआ था लेकिन अब इतना जोर से मारते थे कि भज्यमान अंग चरण स्लथद गात्र, शरीर ढीला होने लगा, जहां मारते थे वहां पर बहुत घाव हो जाता था, बहुत सूजन बढ़ जाता, तुरंत सूजन हो जाता था। मायापुर के मच्छर काटते हैं तो तुरंत घाव हो जाते हैं। इधर के मच्छरों के काटने से घाव नहीं होता है, लेकिन धाम वासी मच्छर है इसलिए ज्यादा इनका प्रभाव। तो भगवान श्रीकृष्ण जब मार रहे थे चारुण को, मारना ही चालू कर रहे थे, अब वह शिथिल होने लगा, अब उसमें दम नहीं रह गया वो कुछ करे, ऐसे था दम उसमें लेकिन वो उत्साह नहीं रह गया था। वो बार बार मार रहे थे, मारना मारना दोनों हाथ से भगवान ऐसे कर रहे। चरुण भज्य मानन तो मुहूर् ग्लानी मवाप, उसके मन में बड़ी ग्लानी, अब तक तो बहुत उत्साह था लेकिन अब सोचने लगा हाय रे बाप के इस लड़के में फंसा, बाप रे बाप, मैं नहीं जानता था कि ऐसा कठिन है, इतना बलवान है। इसको ग्लानी कहते नहीं, कंस से वेतन लो कई हजार रुपया रोज लड़ने के लिए, कंस रखा था इन्हों केवल पहलवानी के लिए, बस खाओ पियो और कृष्ण को मारना है। अब ग्लानी होने लगे कि बाप रे बाप, मैं ये जानता तो इस काम के लिए तैयार नहीं होता। इतना जोर से भगवान मार रहे थे, वज्र से जब उपमा दी जा रही है तो आपने देखा है ना वज्रपात कितनी आवाज होती है और कितना तीव्र चलता, तेज, घर ढह जाते हैं, पर्वत भी विदीर्ण हो जाते हैं, पेड़ टूट करके गिर जाते हैं। इस तरह से भगवान के अंग जब चल रहे थे मुक्का और घूसा तो वज्रपात की तरह, इसके कारण चारुण मुहूर् ग्लानी मवाप, मुहूर् का अर्थ बारम्बार और बहुत अधिक ग्लानी में पड़ गया। मैं ये जानता तो कभी पहलवानी नहीं किया होता, सोच रहा ऐसे ही समझ लिया था। हमारे यहां कभी कभी लड़के लड़ते हैं, एक मल्ल युद्ध करते हैं तो कहते हैं अपने अपने उसको बाजू को कि जरा इसको टेढ़ा कर दो, समझते नहीं हुए लोहा छड़ है, लोहा का छड़ है। तो अब चारुण को अनुभव हो रहा है तो लोहा छड़ है तो वज्र है कृष्ण, हाय रे मैं कैसे फंस गया। लड़का मना कर रहा था लेकिन मैं नहीं युद्ध करूंगा, तुम जबरदस्ती लड़ाए हो ना। अब चारुण को अपनी भूल समझ में आने लगी कि मैं क्यों दुराग्रह किया, हट किया, इसको युद्ध में लगाया। अब तो उस समाज में भागने का भी कोई तरीका नहीं, इतना अभिमान था कि अब भाग भी नहीं सकता। अब जब व्यक्ति नर्वस हो जाता है, अब चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, अब उस बाई में वो लग ही जाता है, तो लड़ने में पड़ा हुआ था। जब भगवान इस तरह से उसको मार रहे थे उसको बड़ी ग्लानी हुई, तो जब भगवान दोनों हाथ से मार रहे थे ऐसी बार बार ऐसी ऐसी ऐसी, तब उसने अपने दोनों हाथ को एक जगह किया है, एक बार बल लगाने के लिए जितना शक्ति है। ससेन वेग उत्पत्त, जब मार रहे थे कृष्ण तो एकाएक उछल गया, ऊपर चला गया, जैसे बाज पक्षी आकाश में उड़ता है, सेन, सेन बाज को कहते हैं, उड़ गया, उत्पत्त, ऊपर उड़ने का मतलब है ऊपर उठ करके दूर जाकर के, और फिर वहां से मौसम बना करके वेग बना करके जोर से चला और आ करके श्री कृष्ण के छाती में दोनों हाथ से मारा। एक हाथ से उतना बल नहीं लगता, दोनों हाथ से, और तिरछा होकर के और छाती में मारा। मुष्टिकृत करव उभव, दोनों हाथों को की मुष्टि बनाया, और भगवंतम वासुदेवम क्रुद्धो वक्षस्य बाधतः, कृष्ण पर बहुत क्रोध में था और उनके वक्षसी अबाधतः, वक्षस्थल में मारा। हरीश्वरी जी अब इस पर उपेक्षा करते हैं कि छाती में क्यों मारा, वक्षस्थल में क्यों मारा। ये कहते हैं मत्कृत क्लेश भागे स नस्या चैन माम भवत तुय पितरम तु करो में तु वासुदेव मताडयत। उसने सोचा कि हो सकता है मेरे प्रहार का इस पर कोई असर न हो, लेकिन इसके बाप को नहीं छोड़ूंगा। वासुदेवम अताडयत, ऐसे सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ऐसा कहा गया है कि जो विशुद्ध सत्व है, हृदय है, वही है वसुदेव, और इस वसुदेव में जो अवतरित होते हैं उनको वासुदेव कहते हैं। इस वासुदेव नाम से वे कहते हैं हरिश्री जी कि मेरे द्वारा दिए गए क्लेश का ये भागी हो या न हो, न प्रभाव पड़े, लेकिन इसके पिता को तो मैं घायल कर ही दूंगा। तो पिता जो विशुद्ध सत्व तो है, तो इसको मैं घायल कर दूंगा, इसलिए छाती पर मारा। यहीं पर वसुदेव रहते हैं विशुद्ध सत्व तो, और उसमें भगवान प्रकट होते हैं। और उसने सोचा कि कृष्ण वक्ष स्थितां कंसासु रासु हरणे स्प्रिहा, इस लड़के के मन में है कि कंस के प्राणों का हरण करें, कंस का वध करने की इसको इच्छा है। और जैसा कि आकाशवाणी ने भी कहा है, नारद जी ने कहा है, सबने कहा है, तो इसके छाती में, हृदय में जो कंस का वध करने की स्प्रिहा है, उसके उस स्प्रिहा को मैं भंग कर दूं। छाती में, हृदय में स्प्रिहा है तो हृदय पर ही मारा, जिसे कम से कब्ज़ करने की इच्छा इसकी समाप्त हो जाए या ये मर जाए, इसलिए छाती पर मारा। स्प्रिहा या इच्छा तो हृदय में ही होती है ना, तो कंस का जान लेने की इसको जो इच्छा है, इसके वक्षस्थल में है, इसीलिए छाती पर मारा। अथवा ये सोचा कि श्री कृष्ण बहुत बढ़ा चढ़ा है, बहुत बल है, बहुत सुंदर है, श्री के चलते इसके वक्षस्थल पर श्री रहती है, तो पहले श्री को ही क्यों न मार दूं, इसलिए छाती पर मारा। श्री से ही सब सफलता मिलती है ना, तो श्री को मारा। देखा कि श्री इसके वक्षस्थल पर है, बाएं वक्षस्थल पर, तो मारा, मतलब कलेजा पर मारा। लेकिन भगवान की भगवत्ता देखिए, जब इस तरह से बाज जैसे परम वेग से दौड़ करके मारा दोनों, तो श्री भगवान मारते हुए उसके हाथ को ही पकड़ लिए, छाती पर नहीं लगने दिए, या एक दो बार मारा, अंत में भगवान ने पकड़ लिया। सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि जब उसने मारा तो ऐसे प्रकट देखा गया कि छाती पर लगी मुष्टिका, लेकिन ना चलत तब प्रहार एड़ा, लेकिन उसके प्रहार से श्रीकृष्ण जहां खड़े थे उससे थोड़ा भी एक इंच भी हटे नहीं। ये भगवान की भगवत्ता है। और ऐसा लग रहा था जितना भी प्रहार किया, कई बार प्रहार किया हो, तो ऐसे कृष्ण रह गए जैसे मालाओं से यदि मारा जाए हाथी को, तो क्या हाथी विचलित होगा, बल्कि उसको अच्छा लगेगा। कई माला लेकर के और कोई हाथी को मार रहा है, फेंक रहा है मां, तो चारुण के उस कठिन प्रहार को भगवान श्रीकृष्ण ऐसे अनुभव कर रहे थे जैसे फूल से मुझे सहलाया जा रहा है। यह है श्रीकृष्ण का प्रभाव सहज, बल्कि उनको सुख हो रहा था, जैसे हाथी को फूल की माला डालने पर सुख होता है मारने पर, तो वैसे श्रीकृष्ण को सुख हो रहा था चारुण के मुष्टिका से। इसलिए तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ये दृष्टांत दे रहे, माला हत इव द्वीप, मालाओं के द्वारा मारा गया हाथी जैसे अविचलित रहता है, भागता नहीं है, हटता नहीं है, वैसे ही श्रीकृष्ण उसके प्रहार से न अचलत, चले नहीं, थोड़ा भी हटे नहीं। इतना वेग से प्रहार किया, लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े, और उल्टे और क्या हुआ, अंत में बाहोर निगृह चारुणम बहुधा ब्राह्मण हरि, उसके दोनों बांह को, बंधे हुए बांह को भगवान ने अपने हाथ से पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़ लिया, छाती पर मुक्का आ रहा था मुष्टि का, लेकिन भगवान पकड़ लिया, पकड़ करके इसके बाद बहुत जोर से घुमाना चालू किया। देखिए भगवान प्रहार नहीं कर रहे हैं, केवल उसके प्रहार का प्रतिकार किए। अब बांह पकड़ करके इसके बाद बहुसो भ्रामयन हरि, और उसमें चारुण को घुमाते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान, बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके पहले गोवर्धन उठाए थे, लेकिन आज चारुण को उठा करके और खूब घुमाए जोर जोर से, बहुत तेज गति से घुमाए, और ब्राह्मणक त्यक्त जीवित हूं, तो घुमाने में इतना जोर से भगवान ने घुमाया कि मर गए आकाश में ही। भगवान के हाथ में उसके दोनों हाथ हैं और उसको लेकर के घुमा रहे हैं, ऐसे उन्होंने पकड़ा बाहर निगरी है। सुखदेव गोस्वामी यहां ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान ने दोनों हाथ से उसके हाथ पकड़े, लगता है घुमाने में सहूलियत रहे, ये कहीं हाथ से दोनों हाथ पकड़ करके घुमा रहे थे, खूब घुमाए, बहुसो बहुसो भ्रामयन, बहुत घुमाए, बहुत तेज गति से घुमाए और अनेक बार घुमाते रहे। तो एक छवि हुई, इसी पर श्री सुखदेव गोस्वामी खाते हैं, हरि हरि है, यह दृश्य देख करके भक्तों का दुख हर लिए। वहां जो स्त्रियां थी और जो लोग थे देख रहे थे और बहुत हर्षित हुए, जब घुमाने इतनी बड़ी योद्धा को और खेल खेल में एक लड़का घुमा रहा है जोर से, तो बहुत बड़ा शरीर था, बहुत दूर में घूम रहा था, पूरा रंग भूमि कवर किया होगा पूरा, तो हेलीकॉप्टर के डायना जैसा हो जोर से, तो ये क्या उतना जोर से घूमेगा, जो जोर से भगवान ने घुमाया इतनी फुर्ती के साथ घुमाया। और बहुसो भ्रामयन हरि, बहुत बार घुमाए, और घुमा करके इसके बाद भूपृष्ठ है भूमि के पीठ पर अर्थात धरातल पर घुमाते घुमाते इसके बाद पट के किसी आदमी को न लगे, भगवान को ध्यान था वहां बैठे हुए किसी को धक्का नहीं, चोट न लगे, घुमा करके घुमाते घुमाते बाद में उन्होंने शिथिल किया, जब मर गया तब शिथिल किया, शिथिल किया, इसके बाद भूपृष्ठ पट के पोथया मास, जैसे कोई कपड़ा धोने वाला किसी पत्थर पर कपड़ा को पटकता है, पोथया मास, पोथया मास का अर्थ ये नहीं कि पटक दिए, हाथ में पकड़े पकड़े पटके, ये अर्थ है पोथया मास, जैसे कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं तो हाथ से पकड़े पकड़े पटकते हैं, ऐसे हाथ में पकड़े पकड़े पटके, क्योंकि हाथ से छोड़ दिए होते तो पता नहीं कितने लोग मर गए होते उस धक्का से, तो हाथ में पकड़े पकड़े पृथ्वी पर पटके। भूपृष्ठे पोथया मास तरसा क्षीण जीवितम, बहुत वेग से भगवान ने घुमाया था, इसलिए उस वेग से घुमाने के कारण क्षीण जीवितम, उसका जीवन क्षीण हो गया था, मर गया। विश्रस्त माला विश्रस्ता कल्प केशर स्वर, उसके आकल्प जो गहना पहना था सब विश्रस्त हो गए, और केश जो बांधा था सब बिखर करके, घुमाने में सब मुकुट चुकुट खुल करके जहां तहां और लंबे लंबे केश सब बिखर गए, और श्रक मालाएं भी, भगवान घुमा रहे थे सब कुछ उधर लंबा होकर के विकीर्ण होकर के, और इसका जमीन पर गिराए तो सब विश्वस्त हो गया। ऐसा लगता था जैसे इंद्र ध्वज गिरा है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं कि बंगाल में कोई ऐसे बड़ा झंडा लोग गाड़ते हैं जो बहुत बड़ा हो झंडा, उसको इंद्रध्वज कहते हैं। जो इंद्रध्वज जैसे गिरे तो उसमें झंडा फहर जाता है, उधर बड़ा लंबा बांस गिरा रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं जैसे इंद्रध्वज गिरता है ऐसे गिरे, तो ये केस आदि जो थी, ये केस जो थे वे बिखरे हुए थे, विशाल झंडा की तरह गिरा, ये अर्थ है। और श्री बलराम जी ने जब मुष्टिक को मारा तो वह हवा के द्वारा, आंधी के द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष की तरह गिरा। कुछ कारण है इसलिए इसका तो बिल्कुल लंबा में गिरना बता रहे हैं, घुमाने के कारण सब कुछ शरीर में टिका हुआ नहीं था, निकल करके जितनी माला होगी तो यहां आकर के अटकी होगी ऐसे, है ना, बांह पकड़ करके घुमाए थे तो सब माला साला बिखर गया और केस बिखर गए और गहने जो लगाया था वो सब बिखर गए, गिरा। अब ये तो चारुण का काम तमाम किया गया, बहुत देर नहीं किया भगवान ने, क्योंकि स्त्रियां उधर डर रही थी, उधर माता पिता व्याकुल हो रहे थे, इसलिए जल्दी मारा उन्हें। तथैव, और इसी तरह से मुष्टिक को मार रहे थे श्री बलराम जी, तथैव तथैव से जो कृष्ण किए चारुण के साथ और चारुण जो कृष्ण के साथ किया उन सबको ले लेना चाहिए। तथैव मुष्टिक पूर्वम स्व मुष्टिया भी हते न भाई, उसने भी अपनी मुष्टिका मारा श्री बलराम जी पर, श्री बलराम जी पर मुष्टिका मारा था, लेकिन परम बलवान श्री बलभद्र जी उसकी मुष्टिका से विचलित नहीं हुए, उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। और इन्होंने एक ही प्रहार किया उस पर, उसके प्रहार से विचलित नहीं हुए, बाएं हाथ से जोर से तमाचा कनपट्टी पर मारे। यहां पर वो तो साक्षात बल है, इतना जोर का लगा उसको, तले न अभिहतो भृषण तो प्रवेपित, जब तमाचा जोर से लगा तो लगा कांपने, छटपटाने लगा, एकदम छटपटाने लगा, कांपने लगा, रुधिरम उद्बमन और खून की उल्टी होने लगे, जैसा लगा कि 5 हॉर्स पावर का पाइप चालू हो गया है खून का। उद्बमन, उद का अर्थ बहुत अधिक, बहुत अधिक बमन, खून निकलने लगा, बलबल बलबल खून एक तमाचा से। भगवान पहले भी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन वो भी देख रहे थे कि कृष्ण कैसे क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण एक लीला कर रहे हैं तो बलराम जी भी अब समझ, वो भी तो भगवान ही है, वे भी तो स्त्रियों के दुख को समझ गए और माता पिता के दुख को समझ गए थे। तल्ले न अभियत, अवज्ञा से मारे, कोई जोर लगा करके नहीं, अगर जोर लगा दे तो क्या नहीं होगा, उनके अंश श्री शंकरषण अपने एक फूंक से ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो इस मुष्टि को मारना कौन बड़ी बात है, तमाचा मारे, प्रवेपित सरुधिरम उद्बमन मुखतोर्दित, और मुखत अर्दित, और उसका मुख टूट सा गया एक तमाचा में ही, इसे लगता है कि दांत तो थे सब टूट गया, और वो गिरा भूमि पर तो मुख के तरफ गिरा, फट से गिरा, खून फेंकता हुआ, व्यसु पपात उरी उर्वी उपस्थ है और पृथ्वी के उपस्थ पर गिरा। उपस्थ माने ऊपरी स्थल, पृथ्वी के ऊपर गिरा। व्यासु बिना प्राण के होकर वाताहत इवांग्री पर, ऐसा लगा कि महा आंधी ने, चक्रवात ने किसी वृक्ष को गिरा दिया है उखाड़ करके। उसको झंडा से उपमा दिए सुखदेव गोस्वामी, इंद्र ध्वज इवा पतन, और मुष्टिक की उपमा दे रहे हैं आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष की तरह। इसे लगता है कि चारों ओर लंबा था, लंबा शरीर वाला, और मुष्टिक कुछ मोटा शरीर वाला था, जमाट वृक्ष है। आखिर उपमा क्यों, ये दृष्टांत क्यों सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं? एक गिरा है तो कहते हैं कि आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष की तरह गिरा, और एक गिरा तो उसको कहते हैं कि वो इंद्रध्वज की तरह गिरा। इसका अर्थ है कि लंबा शरीर वाला था, चारों ओर बहुत ऊंचा, मोटा भी था लेकिन बहुत लंबा था, और वो मुष्टिक लगता है छिगना था। जो भी हो, अब कौन उनके गिरने पर फोटो लेने जा रहा है, क्या थे क्या थे? तो आजकल तो कोई घटना हो जाती है तो लोग फोटो लेते हैं कि सरकार को बताना है, ये वैसे ट्रक दुर्घटना होती है, कार दुर्घटना होती है तो उसका भी फोटो लिया जाता है कि किसका दोष है, कैसे घटना हुई है। हटाने नहीं देते हैं कार को, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रखो, फोटो लिया जाएगा इंजन। तब चारूण का और मुष्टि का फोटो लेने वाला कौन था? सुखदेव गोस्वामी है। इतना ही बताए कि वो लंबा गिरा हुआ था और ये उतना लंबा नहीं था, वृक्ष की तरह गिरा। उपस्थ कार शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े ही गाल कहते हैं कि सुखदेव को सब गाली दे रहे हैं, तो पृथ्वी के उपस्थ पर गिरा है। तो इसके बाद दो पहलवानों को मारा गया, मारना ही चालू हुआ तो जल्दी जल्दी सबको मारा गया। ततः कूटम अनुप्राप्तम, जब भगवान श्री बलराम जी ने मुष्टि का वध कर दिया, इस दृश्य को देख करके सहन नहीं हुआ कूट को, वो कूट आया लड़ने के लिए श्री राम से। तो राम प्रहरताम वरह, प्रहार करने वालों में, मारपीट करने वालों में श्री बलराम जी सबसे श्रेष्ठ। तो जब आया उनके पास लड़ने के लिए, ताल ठोक करके आया, जोर से आया, तो अवज्ञा के साथ बलराम जी ने बाएं हाथ के मुक्का से मारा उसको। उसको तो तमाचा मारा, इसको बाम मुष्टिना, अब हेलना से सावज्ञम अवज्ञा के साथ मारे। वो आया लड़ने के लिए, हमसे हो दंगल ये दिखा करके कि मैं अब लड़ूंगा। एक पहलवान मान लीजिए हार गया चाहे मर गया, और पहलवान है ना, तो ये आया लड़ने के लिए। से श्री बलराम जी लिपटे नहीं, अवज्ञा पूर्वक बाएं हाथ की मुष्टिका से ऐसे मारे और वहीं पर, जैसे श्री बलराम जी मानो टाल रहे कि ये कहां से आ गया, इसको ऐसे मारो। वाम मुष्टिना अबधित, जब कूट भी गिर गया तो चारुण मुष्टिक कूट तीन गिरे, गिर गए, तब सौ तोसल ने सोचा कि दो आदमी इसके साथ भीड़, जो कि मल्ल युद्ध के विपरीत था, लेकिन इन लोगों को गिरा मरा देख करके वो लोग होश में नहीं रहे। देखिए धर्म युद्ध छोड़ दिए, आकर के कृष्ण के दोनों पैर को पकड़ने की चेष्टा की, एक एक पैर को और एक पैर को उठा करके और टांग करके पटक देंगे। जैसे इसने पटका है चारुण को, तो इसी प्रकार से इसको उठा करके और हम पटकेंगे, ये सोचे। तो वे आए कृष्ण को पकड़ने के लिए। तरही शब्द यह व्यक्त कर रहा है कि जब ही श्री बलराम जी ने कूट का वध किया, तब ही दोनों परामर्श करके ये काम करना है, ऐसे अब नहीं हारेंगे, दोनों आदमी को एक साथ लगना चाहिए। तो वे आए एक बायां पैर पकड़ने के लिए, एक दायां पैर पकड़ने के लिए। तो भगवान श्रीकृष्ण ने तुरंत बाएं पैर से मारा उसके सिर पर और दाएं पैर से मारा एक साथ, और दोनों का सिर फट गया, उसी समय गिर गए। हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान के पैरों ने सोचा, श्री चरण ने सोचा कि भगवान हाथ बहुत काम किए, हम किस दिन काम आएंगे, थोड़ा इनसे भी काम होना चाहिए। तो श्री चरण से एक एक पहलवान को मारे, ऐसे जोर से मारे कि द्विधा विदीर्ण मस्तक हो, मस्तक जो था वो दो खंड में हो गया, टूट गया, फट गया वो, और वो गिरे वहां पर। ये था कंस का अखाण है, इसमें पांच पहलवान मारे गए और गिरे थे जहां। वैसे एक दृष्टि से तो ये पहलवान अतिशय भाग्यवान है जिनको भगवान ने मारा, भगवान खेले उनके साथ। अच्छा, जब पांचों पहलवानों को मरा हुआ देखे तो और पहलवान जो बैठे थे लाइन में कि हम लड़ेंगे, वे लोग धीरे से उठकर चले भाग, सब भाग गए कि बाप रे बाप, जहां चारुण मुष्टिक मारे गए तब हम क्या कर पाएंगे। यही मुख्य थे पांचों पहलवान, बरसों से कंस के द्वारा पोसे गए थे, प्रतिदिन कम से कम 10-5 किलो ड्राई फ्रूट खाते होंगे क्या क्या खाते होंगे, लेकिन श्रीकृष्ण और बलराम इस तरह से उनका बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में भगवान की महिमा बताई गई है। क्या ये तमाचा मार देते हैं, किसी को खत्म हो गया, पैर से मार दिए, मुष्टिका से मार दिए। तो श्री बलराम जी ने दो को मारा और श्री कृष्ण तीन को मारे। श्री कृष्ण हमेशा आगे रहते हैं तो पांच पहलवानों का वध हो गया और शेष भाग गए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चारुणे मुष्टिके कूटे सले तो सल के हते, सब एक एक वचन में है, इसका मतलब सब मार दिए गए। चारुणे हते, मुष्टिके हते, कूटे हते, सले हते, तो सल के हते, शेषा और इनके बाद जो बचे थे पहलवान मल्लाई थी, प्रदुद्रुवु प्रकर्षण भागे, ऐसा भागे कि अब कोई उनको पकड़ भी नहीं सकता था। धीरे धीरे भागते तो कोई रोकता, कंस भी रोकता कि कहां जा रहे हो, रुको रुको, लेकिन इतना जोर से भागे, जान बची तो लाखों पाए और कौन दंगल कर ले जाए। श्रील सुखदेव जी कहते हैं प्रदुद्रुवु कर से भागे, और प्रकार से प्रकृषण, जितनी तेज चाल संभव थी उतना भागे। उनको ये भय था कि अब तो मारना चालू किए सबको मारेंगे, लेकिन भगवान बिना लड़ाई के मारने वाले थे नहीं। ये लोग पहले बलराम जी को मारा था मुष्टिक ने, तब वे मारे, और श्री कृष्ण को भी चारों ने पहले बहुत मारा था तब वे मारे। पहलवान अगर बैठे हैं, भले पहलवानी के लिए बैठे हैं, अगर वो नहीं भागे होते तो भगवान मारते नहीं। भगवान परम उदार व्यक्ति, बिना युद्ध के नहीं मारते। अभी इन लोगों ने गलती किया कि दो पहलवान एक साथ कृष्ण पर भीड़ गए थे, इनकी गलती थी। तो भगवान के चरण कमल के द्वारा उनका वध किया गया। हरिश्वरी जी बहुत सुंदर उपेक्षा करते हैं कि भगवान के चरणों ने सोचा कि हाथ से बहुत देर तक मेहनत कर रहे हैं, हाथ बहुत काम किए, अब हमको भी थोड़ा काम करना चाहिए। उस एक श्री वाम दक्षिण श्री चरण दो को मारे, ये जब पांचों मार दिए गए तो शेषा प्रदु द्रुवुर मल्ला सर्वे प्राण परिप्सव। अब जस की इच्छा नहीं थी उन पहलवानों को, केवल प्राण की इच्छा थी। प्राण परिप्सव, परिप्सव भय में प्राण भागने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो उन प्राणों को पकड़ने के लिए मानो ये दौड़ रहे हैं और यहां से निकल करके प्राण निकल रहे, भाग रहे, तो उनको प्राणों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे, अर्थात जीने के लिए। बहुत बड़ा हादसा छा गया वहां पर, यद्यपि इससे सब लोगों को आनंद हो रहा है, उस सभा में बैठे हुए लोग, कुछ ही लोग दुखी हो रहे हैं। जब पहलवान वहां मर गए तो सबको अपने हाथ से खींच खींच करके अखाड़ा से बाहर किए भगवान, हटा हटा करके। अथवा कोई व्यवस्था रही होगी, कंस के कुछ आदमी होंगे जो मृतक शरीर को हटा करके किनारे करते होंगे, चाहे गाड़ी में लाद करके बाहर करते होंगे, जहां भी कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सामने ही गोप सखा बैठे थे मंच पर, जाकर के बल तो बुलाए, श्रीदाम सुबल सबको नाम रखते थे, अर्जुन बरुथप इत्यादि, चाहो आओ तुम लोग दिखावे, हम राजा को दिखावे, जरा मल जो दिखावे, ये तो एक्स्ट्रा हुआ, असली तो युद्ध दिखाना है अपने सखाओं के साथ ना, राजा कौन को ये दिखाना है। तो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन श्रीकृष्ण जा करके जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाए, श्री बलराम जी भी लाए, और इसके बाद दंगल चालू हुआ। और इसमें भगवान हार रहे थे सखाओं से, ये किसी ने उनको पटका भी, वे पटके सही सही, सच्चा जो निजुद्ध था बाहु युद्ध यहां चालू हुआ, खूब खेलने लगे। उस समय श्रीकृष्ण और बलराम के नूपुर इतने सुंदर बज रहे थे, श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, रुत नूपुर गोपान वयस्यान आकृष्य, अभी नहीं आ रहे तो आकृष्य घसीट कर खींच करके लाए, बाह पकड़ करके, चलो यहां पर राजा का मनोरंजन करना है। तई संसृज्य बिजर हतु बाद्यमानेषु तुर्येषु बलगंतौ रुत नूपुरौ। तो पहलवानों के मारे जाने पर कृष्ण और बलराम की जब विजय होती थी तो उस समय बाजे बजते ही रहते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता लोग बाजा बजाना छोड़ चुके थे कंस के डर से, लेकिन जिन ही ये पहलवान मारे गए, देवता भी मनुष्य के रूप में होकर के खूब बाजा बजा रहे थे, खूब बाजा बजा रहे, फिर ही बाजे बजा रहे। और जब कृष्ण सखाओं के साथ, बलराम जी सखाओं के साथ दंगल कर रहे थे, उस पर भी बाजा बजा रहे थे, सब जगह जय जयकार हो रहा है, बहुत अच्छा साधु साधु ये सब उच्चारण हो रहे हैं। तो उस समय कंस को सहन नहीं हुआ, तो जना प्रज हिरसु सर्वे, सभी जन प्रसन्न हुए, तत्रत्या उस रंग भूमि में बैठे हुए सभी जन प्रसन्न हो गए। प्र ज हिरसु प्रकर्षण ज हिरसु, बहुत उच्च हर्ष हुआ, आनंद हुआ। कर्मणा राम कृष्ण यो, और कृष्ण और बलराम जी के कार्य की, पहलवानों के वध की लीला की प्रशंसा करने लगे। रीते कंसम, केवल कंस को छोड़ करके बाकी जितने लोग थे सब प्रशंसा करने लगे। विप्र मुख्य, ब्राह्मण जिनमें मुख्य थे, ऐसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी भगवान कृष्ण और बलराम के कर्म की प्रशंसा करने लगे। सब बहुत अच्छा जय जयकार करने लगे। कंस बैठा है, केवल एक कंस को छोड़कर बाकी सब जय जयकार कर रहे हैं। तो और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कंस के जो व्यक्ति थे वे भी सब डर गए और सोचे कि हमको न मारे तो वे भी जय हो, बलराम की जय हो, कृष्ण की जय हो, ये हो, सभी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई ये न सोचे कि हमारे तरफ प्रतिकूल दृष्टि करे, तो एक कंस को छोड़ करके बाकी सब प्रसन्न थे। और ब्राह्मणों में जो सिरमौर थे वे सब ब्राह्मण साधु साधु कहने लगे, और जो विप्राधम थे कंस के पुरोहित आदि हा 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 इति करने लगे, हाय 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 हाय, अन्याय हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। एक बार बनारस में हमने नारा सुना था, एक आए थे कोई मिनिस्टर बनारस में, बहुत बड़ा मंच बना हुआ था, तो मंच के पास कुछ लोग आए बनारस के, नारा बोल रहे थे, भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। इस तरह से बोल रहे, बारम्बार बहुत झुंड के झुंड बोल रहे थे, बड़ी ऊंची आवाज में और माइक पर बोल रहे थे। उधर मंत्री का भाषण अभी चालू हुआ था कि नहीं याद नहीं आ रहा है, लेकिन इधर भाषण में ही दूसरा दल दूसरा साथी बोलता था, ये बोलते भाषण नहीं राशन दो, तो वो बोलता फिर नहीं तो अपना आसन दो। इस तरह तो ऐसी सभा रंगभूमि हो गई कि एक कंस को छोड़ करके बाकी सब कृष्ण का कीर्तन कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब बाजे बज रहे थे, लोग नाचने लगे, मंच पर खड़े होकर के जहां तहां जय जय बधाई आदि बजने लगी। अब कंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हतेशु मल्ल वर्जेशु विद्रुतेशु च भोजरात नेवारयत स्वतुर्याणी वाक्यम चेदम वाचः। जब पांचों वरिष्ठ पहलवान मार दिए गए और बाकी पहलवान सब विद्रुतेशु सब भाग गए, उसने देखा कंस ने, और बाकी सारे पहलवान उठ करके भाग गए और पांच मार दिए गए मुख्य, तो उसने सबसे पहले बाजा बजाने वाले को रोका। वो सब उमंग में बजा रहे थे, उनको ये भी ध्यान नहीं था कि हम कंस के सेवक हैं, इस महोत्सव में आए हैं। उनको तो बस दृश्य अच्छा चाहिए, खूब बाजा बजा रहे थे, सब लोग जय जयकार कर रहे थे, ये भी बजा रहे थे, पीट रहे थे। तो नेवारयत स्वतुर्याणी अपने तुर्ज का, अपने जो हायर किया था चाहे जो सरकारी बाजा बजाने वाले थे, उनको रोका, ऐ बाजा बंद करो, इस तरह से बंद करो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि बाजा तो देवता लोग बजा रहे थे, और तो कुछ भी करे। और वास्तव में बाजे जो थे मथुरा के रंगशाला में वो सब अपने आप बज रहे थे, भगवान की शक्ति से सब कुछ होता, अपने आप बज रहे थे, तो कौन सुने कि बंद करे, अपने आप बज रहे थे, फिर भी बोल रहा है बाजा बंद करो, बाजा बंद करो, पहले बाजा बंद करो, बाजा बंद करो, माइक वाले माइक हाई करो, कोई सुन रहा है कि नहीं। और तो इस तरह से कहने लगा, और वाक्यम च एदम उवाच, इस तरह का वाक्य बोला, बाजा बंद करो, निःसार यत दुर्वृत्त वसुदेवात्मजो पुरात, वसुदेव के इन दुराचारी दोनों लड़कों को केवल रंगभूमि से नहीं बल्कि मथुरा से बाहर करो। कौन है तुम्हारी बात सुनने वाला, हरिश्री जी कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्बल होता है तो उसके पास एक ही बल रह जाता है, बस आवाज बोली निकालना। कोई नहीं सुन रहा है न करने वाला है। अब किसकी हिम्मत थी कि कृष्ण बलराम को बाहर निकाले? कौन ऐसा जो उनके निकट भी जाने की कोशिश करता है? जो उनके साथ दंगल करके तो पहलवानों की ये दशा हुई, तो कौन मरने जाता वहां सामने? और निकाले के सब तो चाहते थे यहीं रहें और हम रूपामृत को पिए, इनको देखें, सब विभोर थे। और कंस कह रहा है वसुदेवात्मजों, वसुदेव के दोनों आत्मजों को, दोनों पुत्रों को पुरात नगर से बाहर करो। इसका मतलब है कि न तू केवलम रंग भवनात, रंग भवन से ही नहीं मथुरा से बाहर करो। कोई नहीं कर रहा था न कोई सुन रहा था उसके बाद, सब मस्त थे आनंद में, लेकिन ऐसे बोल रहा है वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर करो। क्यों? मान लीजिए कोई पूछे कि सरकार क्या गलती किया, दुर्वृत्तव, इनका वृत्त इनका आचरण दूषित है, अभी अभी निरपराध पहलवानों का वध किया, कहां दंगल हो रहा था कहां मार दिए, ये दुर्वृत्त है ना, ये दंगल हो रहा था राजा के मनोरंजन के लिए तो जान से मारे, ये कितना बदमाशी किए, तो पकड़ करके तुम मारते क्यों ना, ये क्यों कहते हो कि निकाल दो बाहर। कंस बहुत डरता था, बहुत भय था उसे भगवान से, भय से इसका चित रात दिन लगा रहता था कृष्ण में, को बाहर करो बाहर करो। तो बाहर करो का मतलब ये था कि बाहर करो ऐसे जगह कर दो कि मैं बच जाऊं, पर इसको नहीं कह पा रहा था। निःसारयत नितरम सारयत, तो निकाल दो बाहर करो। धनम हरत गोपानाम, और गोपों के धन का अपहरण करो। सबसे धनी वही लोग हैं, गोपों का धन हरो। धनम हरत गोपानाम नंदम बधनी तो दुर्मति, और ये नंद बहुत दुर्मति है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, ये वसुदेव के साथ मित्रता रखता है, यही इसकी दुर्बुद्धि है। तो इस दुर्बुद्धि दूषित मति वाले नंद का वध करो अथवा बांधो, इसको अरेस्ट करो, नंद को अरेस्ट करो, वसुदेव के दोनों पुत्रों को निकालकर बाहर करो। वसुदेव अस्तु दुर्मेधा हन्यताम आश्वसोत्तम, ये वसुदेव जो सामने बैठा है ये बोल रहा है, कौन खूब बड़बड़ा रहा है, ये वसुदेव दुष्टों में सबसे श्रेष्ठ है, असत्तम, इसको इसका वध कर दो, हन्यताम ये मार दिया जाए, इसकी बहुत दूषित बुद्धि है, ये दुष्ट सिरताज है, और उग्रसेन पिता चापी, और उग्रसेन भी ऐसा ही है, भले पिता है तो क्या, पिता च अपि अपि, पिता होने पर भी इसका भी वध करो, सानुगह पर पक्षगह, इसके साथी जितने हैं सबके साथ इस शत्रु के पक्ष को ग्रहण किया है, हमेशा वसुदेव का पक्ष किया है, पर पक्षगह वसुदेव के पक्ष में रहता है। इसका सारस्वत अर्थ है, उसे यहां हम पढ़ रहे हैं। सारस्वत अर्थ का यह अर्थ होता है कि सरस्वती जी वाणी की अधिष्ठात्री हैं, तो कभी भी वे भगवान की निंदा नहीं कर सकती, इसका सरस्वती जी अर्थ निकालती है। दुर्वृत्त कृष्ण बलराम के विषय में सरस्वती जी बोल रही हैं, कंस की जिह्वा पर, ये कृष्ण और बलराम दोनों दुर्वृत्त हैं, दुह का अर्थ है दुर्गमम, वृत्तम का अर्थ है चरितम, जयो तौ, जिनका चरित दुर्गम है, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी समझ में आना कठिन है, तो ये दोनों दुर्गम चरित्र हैं, इनको यहां से बाहर करो। तो वसुदेवात्मजो वो तो ठीक ही है, दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं। पुरात पूरम अध्यस्य लाप लोपे पंचमी, पुरुषे निसारयत निशेषेण सारम श्रेष्ठम कुरुत। अच्छा, पुरात निसारयत का यह अर्थ है कि इस मथुरा नगर में इनको सबसे श्रेष्ठ बनाओ। निसारयत सार का अर्थ श्रेष्ठ, इनको श्रेष्ठ बनाओ। और गोपानम धनम हरत, गोपों का धन ये कृष्ण है, इसका हरण करो, कृष्ण को हर लो, गोपों के धन को हरो। गोपानम धनम कृष्णम हरत। और इसका मतलब है कि हरने का अत्रैव रक्षत, यही रख करके रक्षा करो, कृष्ण को यही रख लो। और दुर्मति दुर्गम मतिर जस्य तम नंदम, जिसकी मति का थाह मिलना बहुत कठिन है, से दुर्गम मतिर नंद को बांधो, अर्थात वृंदावन मत जाने दो, मथुरा नहीं रखो बांध करके। बांध करके रखो मतलब प्रेम की डोरी से बांध लो इनको, नंद को भी प्रेम की डोरी से बांध करके यहीं रखो, मथुरा ही रहे। वसुदेव के दोनों दुराचारी पुत्रों को निकाल दो, और नंद गोपों के धन को हरो, और नंद को अरेस्ट करो। नंद महाराज के विषय में दुर्मति कह रहे हैं, बड़ा दुर्मति है, दुर्गम मति है इसका। जब कंस क्यों दुर्मति कह रहा है अपनी समझ से, कि वसुदेव के साथ इसने ऐसी मित्रता किया, एक दोनों महाकपटी है, ये अपने बेटा को ले जाकर के इसके यहां रख दिया तो रख लिया, और अपनी बेटी को दे दिया, हमारे साथ दिन दोनों ने इतना दगाबाजी किया है, यही कंस के कहने का मतलब है। लेकिन ये भी भेद नहीं खोला, ये भी भेद नहीं खोला, इसलिए इन दोनों को मारना है। वसुदेव अस्तु दुर्मेधा, वसुदेव दुर्मेधा है, जिसकी मेधा दुरंत है, अद्भुत बुद्धि है, सरस्वती अर्थ है। वसुदेव की बुद्धि दूषित है, हन्यताम आशु असत्यम, जिससे बढ़ करके और कोई सत्य कोई संत नहीं है, वो है असत्यम, सरस्वत अर्थ है। न विद्यते सत्यम जस्मात् सह असत्यम, असत्य जिससे बढ़कर, अ माने नहीं, जिनसे बढ़कर के कोई सत्तम नहीं है, कोई संत नहीं है, साधु नहीं है। अर्थात साधु शिरोमणि वसुदेव को हन्यताम, हन्यताम का अर्थ होता है हा का अर्थ है अनुगमन, अनुगमन करना, तो सब वसुदेव जी के पीछे चलो, ये अर्थ है। और जितना जल्दी हो सके, सरस्वती जी अर्थ करती उग्रसेन पिता चापी से अनुग्रह परपक्ष, उग्रसेन हमेशा परपक्षग है, पर का अर्थ है परमेश्वर श्री कृष्ण, ये हमेशा श्री कृष्ण के पक्ष में रहा है, परपक्षग है सरस्वत। मतलब उग्रसेन सदा कृष्ण के पक्ष में रहा है, वसुदेव को सहारा देता रहा है, नंद भी ऐसा ही है, वसुदेव तो दुष्टों का सिरताज ही है, इतना बड़ा दुष्ट है, हमसे कहा कि देवकी को छोड़ दीजिए, मैं अपना पुत्र सब सौंप दूंगा आपको, और उस समय जब पुत्र हुआ तो लेकर के गोकुल पहुंचाया है, इतना कुटिल बत छोड़ है आदमी, इसलिए सबसे बड़ा दुष्ट वसुदेव जी को कहा है। ये उसका अपना रियलाइजेशन वो अपने स्टैंडर्ड से देख रहा है कि हमारे साथ ये धोखा दिया है, और उधर लड़का छिपा करके आ गया, और नंद की लड़की को दिखाया इधर, अपने समझ से कंस को यही लग रहा था कि वसुदेव जैसा धोखबाज व्यक्ति कोई नहीं, इसलिए इसको तो आंसू हन्यता, जितना जल्दी मारो, मतलब यहीं पर जैसे पहलवान मरे हैं तो वसुदेव को भी मारो यहीं पर, एक ही साथ श्मशान में भेजो दोनों को। आंसू का अर्थ ये है, तुरंत देर नहीं करना, बस मैं मेरे मुख से आज्ञा निकल रही है और उसी समय होना चाहिए। अब जब वसुदेव जी के विषय में, श्री नंद बाबा के विषय में, उग्रसेन जी के विषय में, गोपों के विषय में इस तरह से बातें बोल रहा था कंस तो भगवान प्रकुपित, भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन यह कहा गया प्रकुपित, प्रकृष्ट क्रोध हो गया। अपनी निंदा से नहीं होता है भगवान को, अपने दुख देने से नहीं क्रोध होता है, लेकिन इनके भक्तों की कोई निंदा करे, और भी दुर्वचन वसुदेव जी के विषय में, नंद बाबा के विषय में, तो अब भगवान की इच्छा हो गई कि कंस का वध करें। नहीं तो यदि वह वास्तव में इस तरह की बात नहीं बोला होता तो भगवान उसको भी नहीं मारते, क्या जरूरत है किसी को बिना मतलब के मारने की। भगवान आए हैं निमंत्रण में, ठीक है ये लोग अपनी करनी से मारे गए, पर इसके बाद भी कंस आकर के शरण में गिर गया होता तो भगवान वध नहीं करते, उनके बाप दादा का नाम बखान रहा है किसी को, वसुदेव को मारो ये दुष्ट है, नंद को बांधो, गोपों का धन हर लो, ये करो वो करो, उग्रसेन भी वैसा ही है इसका वध करो। मान लो सोचा हुआ कोई कहे कि अगर पिता है तो पिता चापी, पिता है तो क्या, पिता है फिर भी इसका वध करो। तो इस तरह से बड़बड़ा रहा था तो भगवान को क्रोध आया, एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः लघिन्नोत्पत्त्य तरसा मंचनो तुंग मारुह। इस तरह से जब वो विकथन कर रहा था, बिना मतलब की बातें बोल रहा था, भगवान प्रकुपित हो गए, पर कोप करने के बाद भी अव्यय है। जैसे मनुष्य क्रोध करता है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, व्यय हो जाता है, व्यय होने का मतलब उसका मस्तिष्क बैलेंस में नहीं रह जाता है, हाथ पैर आदि भी कुछ दूसरे तरह से व्यय होने लगते हैं। क्रोध करने के बाद भी भगवान जैसे जिस स्वरूप में है वैसे ही है, इसीलिए अव्यय पद का प्रयोग करते, अविनाशी सब समय एक समान रहने वाले भगवान प्रकुपित हो गए, और बड़ी फुर्ती से लघिन्ना, फुर्ती से उत्पत्त्य, उछल गए ऊपर, उड़ने जैसा हो गए, मतलब इतना जल्दी गए मंच के पास कंस के कि कोई देखा भी नहीं, अकस्मात ऊपर चले गए, कोई सीढ़ी नहीं थी, इस तरह से सीढ़ी से नहीं गए, उत्पत्त्य जल्दी जल्दी चले गए, ऐसा लगा कि उड़ करके चले गए, क्योंकि लघिन्ना कृष्ण लघु से भी लघु, हल्का से भी हल्का है और भारी से भी भारी है। तरसा बड़े वेग से तुरंत ही उत्तुंगम मंचम आरुहत, उस ऊंचे मंच पर चढ़ गए, बहुत जल्दी चढ़ गए। जब इस तरह से गाली दे रहा था वसुदेव जी को और नंद बाबा को तो भगवान को सहन नहीं हुआ, अति शीघ्रता से अलक्षिततया उपेत्य तरसा वेगेन बलेन ऊपर चढ़ गए, और चढ़ करके तो चढ़ गए तुरंत मंच पर, मंच तो चौड़ा था बड़ा था और ऊपर आसन लगा हुआ था, तो जब मंच पर आ गए, जब देखा कंस कि मंच में आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, तमा विषंतमा आलोक्य मृत्युरात्मन आसनात् मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोसि चरमणि। कंस बड़ा धीर व्यक्ति था, वीर था, लेकिन देखिए इस तरह इतना धैर्य उसका खत्म हो गया, धैर्य मनस्वी का, धैर्यवान का धैर्य खत्म हो गया, और निहत्थे कृष्ण को जिनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, उनको मारने के लिए तलवार और ढाल ले लिया, ये भी नियम के विरुद्ध था, वहां सब लोग जुटे हैं, कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आया है। तो जब श्रीकृष्ण मंच पर आने लगे तो उसने तुरंत ही तलवार ले लिया अपने दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में ढाल। ढाल का अर्थ है कृष्ण के प्रहार से बचेंगे। तो उनके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मान लीजिए यो मुष्टिका से भी मार देगा तो नाक सांप टूट जाएगा, वो सोच रहा है। देखा बड़े बड़े पहलवानों को मरते हुए, तो इसलिए ढाल लिया कहीं सिर पर कहीं प्रहार न करने पर, और तलवार लिया मारने के लिए, उसको मारूंगा। तम आविशंतम आलोक्य, मंच के भीतर आते हुए देख करके उसने तुरंत ले लिया, आसन से खड़ा हो गया, ढाल तलवार लेकर के तैयार हो गया। जगह असी चरमणी, तो भगवान ने देखा उसको, ढाल और तलवार लेकर के बस पैतरा बदलने लगा, इतना जोर से कि आकाश में चल रहा था, तलवार भांज रहा था, तलवार कृष्ण को मारने के लिए और ढाल बचने के लिए। तो कृष्ण उसे पकड़ना चाहते हैं, तो जैसे आकाश में बाज पक्षी दाएं बाएं पैतरा बदलता है, वैसे वो होने लगा। जो भय था कि ये हमको मार देगा, जो पहलवानों को इस आसान तरीके से मार दिया तो मुझे भी मार सकता है, उससे बड़ा हादसा हो गया एकदम, अब दिल दहल गया पहलवानों की मृत्यु देख करके। तो मनस्वी धैर्यवान था, लेकिन वो भी सहसा उठकर खड़ा हो गया, हाथ में ढाल तलवार लेकर के। और तम खडग पाणी विचरण तमाशु, भगवान ने देखा कि खड्ग पाणी हाथ में तलवार लिया है और विचरण तम आशु, बहुत तेज गति से विचरण कर रहा है। अगर एक जगह रहेगा तो उसने सोचा कि हो सकता है कृष्ण पकड़ ले, लेकिन बहुत फुर्ती से घूम रहा था, जैसे आकाश में सेन बाज पक्षी उड़ता देखे है ना, ऐसे वैसे उड़ता है बाज पक्षी की तरह, हवाई जहाज भी उतरते समय से ऐसे करता है। तो ऐसे वो भांज रहा था, कभी बाएं कभी दाएं, कभी कृष्ण पकड़ ना पाए, और कृष्ण पर प्रहार करना चाहता, लेकिन बाज बेग से अति बेग से दाएं बाएं घूमते हुए अंबरे आकाश में, लगभग कंस आकाश में ही था, पैर नाम मात्र के लिए रखता था मंच पर, लेकिन वो उड़ता सब दिखाई पड़ता था कि पकड़ ना पा रहे। लेकिन ऐसे कंस को भी भगवान ने उस तरह से पकड़ लिया जैसे महाविषधर विष सांप को गरुड़ जी आसानी से पकड़ लेते। सुखदेव गोस्वामी ऐसे कह रहे थे, पकड़ लिया। ये अनुरूप दृष्टांत है। यहां पर जो कह रहे सेनम जथा दक्षिण मध्य मम दक्षिण शब्द मम बरे समग्रही दुर्विशोग्र तेजा जथो रगम तर्क्ष सुतो प्रसह्य। इसके द्वारा सेन वेग से इस समझ में आ रहा है दृष्टांत से कि जैसे महाविषधर सर्प को गरुड़ जी पकड़ लेते हैं, इस दृष्टांत से यहां यह कहा जा रहा है कि कंस को पकड़ लेना असंभव था दूसरे के लिए। एक भगवान को छोड़कर के कोई समर्थ नहीं था जो कंस को पकड़ ले, और वो भी जब हाथ में तलवार लिया है और बिल्कुल सावधान है, पर ऐसे सावधान कंस को भी भगवान ने पकड़ लिया। पकड़े कैसे, वो पकड़ना चाहते थे हाथ नहीं, हाथ में तलवार था, ढाल थी। उस समय आप जरा विचार कीजिए, किसी को मारना हो परास्त करना हो क्या उपाय किया जाए, तो भगवान चाहते थे उसका केस पकड़ना। वे गए उसको पकड़ने की चेष्टा किए, उसका वार उसके प्रहार से बच करके और पकड़ना चाहते थे, वो पकड़ा नहीं जा रहा था। विनम्र भगवान ने जब ही पकड़ना चाहा केस, तो मस्तक को हटाया, मस्तक को विशेष रूप से चालित किया, मस्तक जोर से घुमाने के कारण मुकुट गिर गया, उसके बाद खुला बाल भगवान ने पकड़ लिया, पूरा पकड़ में समग्रहित सम्यक अग्रहित, ऐसा पकड़े केस को कि अब वो छुटकारा नहीं पा सकता। कभी कभी शंका हो सकती है कि जब मुकुट बांधा हुआ है तो भगवान ने केस कैसे पकड़ लिया। इसी पर श्री सनातन गोस्वामी जी लिखे हैं कि भगवान जब उसका केस पकड़ना चाहते थे तो अपने सिर को इधर उधर हटाया बहुत देर से, तो गिर गया मुकुट, फिर भगवान ने पकड़ लिया। देखिए भगवान किसका केस पकड़ रहे हैं, जो हाथ में तलवार लिया है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबले अतीर को भी जिसने अपने बस में किया था, सारे देवता आदि उसके नाम से कांपते थे कंस से, और ऐसे कंस को जो तलवार के साथ घूम रहा है उसको भगवान ने पकड़ लिया। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कुछ भी नहीं है, खुले हाथ, और जाकर के उसका केस पकड़ लिए। और केस पकड़ लिए ऐसे दशा में, उस केस पकड़ करके इसके बाद वहीं से इतने बलवान कंस को अखाड़ा में ऐसे फेंके पटक। ये सब 10.5-11 वर्ष का बच्चा कर रहा है। श्री कृष्ण क्या है अगर उनके बारे में जानना हो तो भगवत गीता से जानना चाहिए और श्रीमद् भागवतम से। कृष्ण अद्भुत, वंडरफुल कृष्ण, इतना ही कहा जा सकता है कि अद्भुत लड़का है, अद्भुत है कृष्ण, वाणी से परे है, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। कंस जैसे दुर्दांत दैत्य को तलवार लेकर के पैंतरा बदल रहा है और श्रीकृष्ण बिना कुछ लिए हाथ में खाली है और इतना निर्भय रूप से जा करके उसके मंच पर, उसके आसन पर, और वहां उसको पकड़ना चाहता है, वैसे पकड़ लिए जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते। सांप कितना भी फन फैलावे, कुछ भी करे, लेकिन गरुड़ जी के लिए किसी भी सांप को पकड़ लेना अत्यंत आसान। अभी अभी बॉम्बे में कथा हुई थी और कथा में वर्णन था कि मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी उतारे क्षीर समुद्र के तट पर, तो श्री भगवान ने उनको कहा कि अब आप चले जाइए, तो इसलिए कि वहां वासुकी नाग को आना था। सर्पाणाम वासुकीश चास्मी, गीता में भगवान कहते हैं मैं समस्त सर्पों में वासुकी हूं, परम बलवान, बहुत लंबा, बहुत विषधर वासुकी नाग, उनको भगवान लाना चाहते थे समुद्र मंदराचल में डोरी बनाने के लिए, नेति बनाने के लिए। लेकिन गरुड़ जी वहां रहते तो नहीं आ सकते थे, इतना बलवान सर्प, उसको भय था कि गरुड़ खा जाएंगे हमको। बताइए गरुड़ जी के सामने जब वासुकी इतने डरते हैं तो और सांप क्या गिनती में है। तो जैसे किसी सांप को, दुर्विषह तेज वाले सांप को गरुड़ जी पकड़ लेते हैं, वैसे भगवान ने पकड़ लिया। जब गरुड़ जी पकड़ लेते हैं तो गरुड़ को सवारी करने वाले के विषय में क्या कहना है। गरुड़ जी जिसके सेवक है, अगर वह पकड़ लेते हैं कौन असरज की बात। श्री कृष्ण का तेज अद्भुत है, इसको बता रहे हैं। दुर्विषहोग्र तेजा, ये तो गरुड़ जी के विशेषण है या भगवान का। भगवान का, गरुड़ जी का तेज, यहां अर्थ यही किया गया, गरुड़ जी का जो तेज है दुर्विषह है, कोई सहन नहीं कर सकता है पराक्रम। कालिये नाग को अपने बाएं पंख से केवल मार दिए, वो बिल्कुल बेहोश जैसा हो गया, उसके बाद भागा होश आने पर वृंदावन पूरा परिवार के साथ। तो रमणक द्वीप में रहता था, भागा वृंदावन में, मारे नहीं गरुड़ जी उसको, जान से नहीं मारे, केवल बाएं पंख से थोड़ा मार दिए, इसी पर उसे आंधी आ गई। तो गरुड़ जी जैसे सर्प को पकड़ लेते हैं ऐसे उन्होंने पकड़ लिया। भगवान का असह्य तेज है, उग्र तेज है, प्रसह्य। प्रसह्य का अर्थ है कि वो पैतरा बदल रहा था, तलवार से मारने की चेष्टा कर रहा था, ढाल से सब कुछ, इतना फुर्तीला था, कौन पकड़ में नहीं आना चाहता था, लेकिन प्रसह्य बलात् पकड़ लिए। ब्लाक पकड़ने का ये अर्थ है कि ढाल हटा करके और बाएं हाथ से उसके बांह, उसके तलवार को भी इधर उधर करके और जबरदस्ती केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके क्या किए, प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम। मुकुट तो पहले ही गिर गया था। प्रगृह्य केशे सु, केश पकड़ करके निपात्य रंगो परितुंग मंचा, उस ऊंचे मंच से रंगों परी, रंग खास करके अखाड़ा को कहा जाता है, उस अखाड़ा में पटके ऊंचे मंच से कंस को पकड़ करके, केश पकड़ करके पटके। केश पकड़ना स्त्रियां भी कभी कभी युद्ध करती हैं, तो झोंटा झोंटी वसी बहुत भारी उनका अस्त्र होता है। कोई अस्त्र नहीं है तो बस हमने एक दो बार देखा है, एक स्त्री किसी का केस पकड़ी है, वो उसका केस पकड़ी है, दोनों चुपचाप कोई हार रहा है न जीत रहा, अगर वो कड़ा करे तो वो कड़ा करेगी, बस पकड़े रहे इतना ही काफी है। तो कड़ा करने पर तो श्रीकृष्ण का हाथ तो खाली था, तो अब क्या करे, उन्होंने देखा कि बस यही उपाय है, झोंटा पकड़ करके इसको पट। भोजपुरी में केस को झोंटा कहते हैं, केस, केस पकड़े और पकड़ करके पटक दिए। स्वयं ऊपर थे, केस ऐसे पकड़े और केस पकड़ करके झटका दिया, अखाड़ा में चला गया। एक 11 वर्ष का लड़का ये सब कर रहा है, इसलिए श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान की महिमा को, सौंदर्य आदि को अपने हृदय में बसाना चाहिए और उसको अखाड़ा में पटक करके तस्य उपरिष्टा, उसके ऊपर स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। आत्मतंत्र समस्त विश्व के आश्रय, और जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ही सारा विश्व उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान समस्त विश्व का भार लेकर के उसके ऊपर पपात कूदे, उसके ऊपर गिरे। पपातक आयत नहीं कि देह से पूरा गिर गए, पैर की तरफ से गिरे, धूही मारे, उसको क्या कहते हैं, इधर जब आदमी दौड़ करके कहीं कूदता है जमीन पर तो उसको क्या कहते हैं, जंप थोड़े कहते, तो अंग्रेजी शब्द है? हाँ ठीक है, चला कूदी कहते हैं। मंच से भगवान सीधे कूदे उसके देह पर, और जैसे ही वो कूदे उसी समय उसका प्राणांत हो गया। क्योंकि समस्त विश्व भगवान के भीतर है, विश्वाश्रय, स्वयं अब्जनाभ हैं, पद्मनाभ, भगवान उसके शरीर पर कूदे, तो उस समय सारे विश्व का भार भी उन्होंने आविष्कृत किया, बहुत भारी वजन गिरा है काय। तो कोई व्यक्ति गिरा हो उसके बाद पहाड़ गिर जाए तो कहां से जिएगा। श्रीकृष्ण बाहर से देखने में तो ऐसे ही परम सुंदर बालक है, हल्का, लेकिन पूरा विश्व भीतर लेकर के कूदे, ऐसा विश्व भीतर है ही, लेकिन उस समय उन्होंने बल को आविष्कृत कर दिया, बहुत वजन, कंस पर बहुत भारी वजन गिरा। गिरा वो मर गया। तम सम परे तम विचकर्ष भूमौ हरीर जथेभम जगतो विपश्यतः हा हेति शब्द सुमहांस्तदाभूत उदीरित सर्वजनैर्नरेन्द्र। तो तम संपरे तम, वो मर गया था, उसके मरे हुए शरीर को भगवान श्रीकृष्ण अखाड़ा में लगे खींचने, ठठेरने लगे। तो जब खींचने लगे मरे हुए शरीर को, तो उस समय हाहाकार हुआ। हाहाकार क्यों हुआ जब सब लोग आनंद में थे? तो यह एक प्रश्न उठता है, हाहाकार क्यों कर रहे थे? कौन लोग हाहाकार कर रहे? हाहाकार इसलिए कर रहे थे, इतने बड़े राजा को, जो भी दुष्ट हो, कुछ भी हो, अब इसको जमीन में ठठेरना ठीक नहीं। इस पर हाहाकार हुआ, मरने पर हाहाकार नहीं हुआ। और हाहाकार हो क्या? सब लोग देख रहे थे कि एक हल्का लड़का कूद रहा है, तो अब उस समय हाहाकार क्या करे? लेकिन मर गया, ये लोग जान गए, तब भी हाहाकार नहीं किए। जब कृष्ण उसके मृतक शरीर को लगे खींचने इधर उधर, तब हाहाकार हुआ। अरे शरीर मर जाए तो उसको सजाया जाता है कपड़े से, उसको श्मशान में ले जाते हैं, किसी मृतक की फजीहत इस तरह से किया जाए तो हाहाकार तो होगा ही। हाहाकार इसलिए हो रहा था, लोगों को बड़ा विस्मय हो रहा था, इस प्रकार का व्यक्ति इस बुरी मृत्यु से मर रहा, खींचा जा रहा। हाहाकार दुख से नहीं हुआ, विस्मय से हुआ। यहां पर लिखा गया है जगतो विपश्यत इति केनापि न निवारित इति निवारितम इति सर्वेशम एव सुखम इति च सूचितम। अच्छा, भगवान जब कंस के मृतक शरीर को खींच रहे थे, तो वहां दूसरे लोग चाहते तो आकर कहते ना कि ऐ क्या कर रहे हो, ये खींचो मत। कहते ना, छोड़ दो, मार दिए यही काफी हुआ, अब ये मत इसको ठठेरो मत, खींचो मत। ये किसी ने मना नहीं किया। तो श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि क्यों लोग मना करें? वास्तव में कंस के वध से सबको सुख मिला था, तब हाहा इति क्यों कर रहे थे? हाहा इति शब्दो अत्र विस्मय, महासुरस्य अपि अवज्ञया बधा, महावीर को भी इस तरह से खींचा जा रहा है मार करके, तो इसलिए हाहाकार हुआ। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, किसी ने निवारण नहीं किया। जा करके कोई रोक सकता था, एक कृष्ण छोड़िए छोड़िए, प्रेम से ही निवारण किया होता ना। नंद बाबा चाहे वसुदेव जी कहे होते कि छोड़ो, ये मत करो, किसी ने निवारण नहीं किया, पर हाहाकार किया। हाहाकार सबने किया, तो केवल अवज्ञा पूर्वक आकर्षण करने के कारण हाहाकार हो रहा है, मरने के कारण नहीं। तो हाहा इति सर्वम आसित, विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ततो हाहा इति सर, ततो हाहा हतम सर्वम आसित तदरंगमंडलम अवज्ञया हतम दृष्ट्वा कृष्णेन मथुरेश्वरम। कृष्ण के द्वारा मथुरेश्वर राजा कंस को इस तरह से अवज्ञापूर्वक खींचते देख करके, तब रंगशाला के लोग हाहाकार किए थे। दुख में नहीं, इस तरह अवज्ञा से खींच रहे हैं। ये तो कोई मरा हुआ पशु खींचा जाता है ना, ऐसे जो ले जाते हैं चाम निकालने के लिए, कुछ ऐसे भगवान खींच रहे हैं और जहां तहां पैर सिर हाथ सब टटरा रहा है। अच्छा भगवान खींचे क्यों? हरिश्रु जी इस पर लिखे हैं कुछ। कंस के मृतक शरीर को भगवान रंगशाला में अखाड़ा में खींच क्यों रहे हैं? इसके पीछे भी कुछ कारण है। एक तो अर्थ एक करते हैं, कंस इतना दुराचारी रहा है, पापी रहा है कि यदि अपने हाथ से मैं नगद इसका उद्धार नहीं करूंगा, नहीं खींचूंगा, तो इसका उद्धार नहीं होगा। शायद भगवान इसीलिए अपने हाथ से उसका उद्धार कर खींच रहा। अपने हाथ से खींच रहे हैं। और एक अर्थ ये है कि जहां वो स्त्रियां बहुत सुख में थी और सब लोग सुख में थे पहले, तो उनको भगवान दिखाना चाहते साफ देखने की मर चुका है, उनको हर्षित करने के लिए खींच खींच कर दिखा रहे थे। अगर थोड़ी भी जान होती तो हाथ पीटता, चाहे कुछ कुछ चेतना का लक्षण प्रकट होता, कि दिखा रहे थे कि एकदम समाप्त हो गया, इसलिए खींच रहे थे। और भी हरिश्री जी ने लिखा है, कहां है इसमें, भगवान ने मुकुट क्यों गिरा दिया कंस का? इस पर हरिश्री जी लिखते सत्युग्र से ने पृथ्वी पतव कथम निर्लज्ज में भी मुकुटम समुद्रितम कच्चा निगृहिया सो तदा शयन किल ततः पृथक श्री पतिना अथवा कृतम। उग्रसेन महाराज के रहते हुए, जो राजा थे वास्तव में, उग्रसेन महाराज के रहते हुए यह निर्लज्ज कंस मुकुट कैसे पहन रहा है, इसको लज्जा नहीं आ रही है। इस आशय से भगवान ने उसके केशों को पकड़ करके मुकुट गिरा दिया। इस आशय से, आशय हाथ को भी कहते हैं, यहां से यहां के अंश को आशय कहते हैं संस्कृत में। तो इस आशय से भगवान ने कंस का मुकुट गिराया और ये सोच करके कि महाराज उग्रसेन के रहते हुए यह कैसे मुकुट पहन रहा है, इसको लज्जा नहीं आ रही, तो मुकुट गिरा दी। कुछ भाव सुन लेना चाहिए। केस को पकड़ करके क्यों उन्होंने शत्रु पर विजय प्राप्त किया? हरेश्वर जी कहते हैं जब किसी शत्रु को जीतना हो तो उसके सजातीय का अवलंबन लेकर के ही उसको जीतना चाहिए। सजातीय इस शरीर के साथ ही केस जन्म लिया है, तो भगवान ने पहले उसका आश्रय लिया केस का, सजाति का, तब कंस का वध किया। अच्छा भगवान ने उस समय भार क्यों प्रकट किया है? जितना वजन हमेशा रहता है उतना ही कूदना चाहिए था, तो पूरा विश्व का भार, गुरु भार, गुरु का अर्थ होता है भारी, इतना गुरु तो क्यों प्रकट किया, भारीपना क्यों प्रकट किया? इस पर हरिश्री जी कहते हैं मन मातुलो यमिति में गुरुरेव साक्षात। कंस मेरा मामा है, ये साक्षात गुरु है। गुरु का अर्थ बड़ा भाई, मां को भी गुरु कहते हैं, पिता को, चाचा को, ताऊ को, बड़े भाई को गुरु कहते हैं। तो ये तो मामा है, मेरे मां का भाई है, ये तो साक्षात गुरु है। तत्सर्वलोक गुरुरप्यहमस्त शिष्य, पर सारे लोगों का, ब्रह्मा आदि का गुरु होकर के भी मैं इसका शिष्य हो गया, इसका भांजा हो गया। तो भगवान ने सोचा कि अब इस गुरु को बता दूं कि सबसे बड़ा गुरु मैं हूं, सबसे भारी मैं हूं, मामा होने से क्या हुआ। जानन इदम नये विदेश विभूष किमस्मिन स्वाम सर्वलोक गुरुतम निदधे स्वभारा। अपने भार से मानो भगवान ने ये बताया कि नहीं नहीं, किसी भी दशा में मैं भांजा हो चाहे कुछ भी, मैं ही सबका गुरु हूं, सबसे भारी मैं ही हूं। ये अपनी सर्वलोक गुरुता को भगवान ने प्रकट किया। मेरा कोई गुरु क्या होगा, मैं ही सबका गुरु हूं, सबसे भारी। अहो विचित्रं भुविकं सहिंसनं चकार लोकातिगमच्युतस्तदा बहिर्दृशोध पतनं जगुर्जना निरंजना ऊर्ध्वमिदं तुमे निरे। भगवान ने कंस की अधोगति किया, ऊंचे मंच से अखाड़ा में पटका, तो बहिर्दृशा बाहरी दृष्टि से लोग ये समझेंगे कि कंस की भगवान ने अधोगति किया, अधः नीचे गिरा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान हैं, वैष्णव हैं, वे समझते हैं कि वास्तव में कंस को भगवान ने ऊर्ध्वगामी किया, वो नीचे नहीं गिराया, वो देखते है ना, वो भगवान का सारूप्य प्राप्त किया, वैकुंठ प्राप्त किया। तो अधोगति कैसे हुई? बाहरी दृष्टि से देखने में लगता था कि नीचे गिरा रहे, लेकिन उन्हें बहुत ऊंचा गिराया, ऊंचा उठाया। अहो विचित्रम भुविकं सहिंसनम चकार लोकातिगमच्युतस्तदा बहिर्दृशोध पतनम जगुर्जना निरंजना ऊर्ध्वमिदं तुमे निरे। निरंजना जो माया से शून्य है, वैष्णव जन भक्त जन वे जानते हैं कि भगवान ने कंस को अपने धाम पहुंचाया, न कि अधोगति में डाला। तो कहा जाता है ना कि कंस को भगवान ने नीचे गिराया, नीचे गिरा। नहीं, नीचे नहीं गिराया, बहुत ऊंचा उठा, इस प्राकृत जगत से ऊपर अपने दिव्य धाम में भगवान ने पहुंचा दिया। ये भगवती है। अरे आप विचार कीजिए, भगवान जिसको अपने हाथ से छू रहे हैं, उसकी कभी अधोगति हो सकती है? ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होती है? भगवान अपने हाथ से केस पकड़े और फिर कूदे देह पर, उसकी कैसे अधोगति हो सकती है? ये तो बाहरी दृष्टि से लगता है कि उन्हें नीचे गिराया, नहीं तो बहुत ऊंचा उठाया। वास्तव में वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति मिली। प्रारब्धम लघुवा बृहद भुवि बिना भोगम न जाति क्षयम सिद्धांतोस्ति तथापि मत स्मृतिमतां अत्यल्प कालाश्रितम स्याजस्मादवलोक तादृशमहम तत्कालमेव धराम यद्यद्धा तम कर्तस्तुति प्रभुरधात कंसापकर्षात स्फुटम। कंस को भगवान ने आकर्ष किया, खींचा, उसके विषय में कहते हैं हरिश्वर जी, किसी का प्रारब्ध है, पहले का किया हुआ कर्म का फल जो चालू हो गया है, वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, बिना भोग के वो क्षय नहीं होता है। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये सिद्धांत है, सिद्धांतोस्ति तथापि, फिर भी भगवान इन्होंने दिखाया कि जो मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करने वाले का प्रारब्ध है बहुत अल्प काल के लिए भोगा जाता है, अल्प काल के लिए। मैं प्रारब्ध का नाश कर देता हूं। भगवान कंस को खींच रहे हैं, यही दिखा रहे हैं। कंस दुर्नय जितना पाप है उसकी राशि था, उसने कितना अत्याचार किया, कितने ब्राह्मणों की हत्या, कितने गौओं की हत्या, निर्दोष जनता की हत्या किया, अपने बहन के पुत्रों को मारा, अपने बहनोई वसुदेव जी को जेल में रखा, क्या क्या नहीं किया, बहुत बड़ा पाप किया। इसको लिखा था नरक में गिरना, इसका प्रारब्ध था, इसे घोर दुर्गति में पड़नी थी। लेकिन भगवान ने दिखाया कि नहीं, जो मेरा स्मरण करता है, भले बैर भाव से करता था, भय से करता था, लेकिन जो मेरा स्मरण करता है उसकी अधोगति कितने देर की होती है? जितने देर तक मंच से अखाड़ा में गिरने में देर लगा, जितना देर लगा उतने ही बस, इसके बाद कोई दुर्गति नहीं है। क्योंकि कंस निरंतर स्मरण करता था भगवान का, बहुत अल्प काल के लिए अधोगति हुई। ये अधोगति भगवान दिखा रहे हैं, वे जिसको अपने हाथ का सहारा दें उसकी दुर्गति कैसे होती। तो प्रारब्धम लघुआ बृहद भूमि बिना भोगम ने जाति क्षय। प्रारब्ध का अर्थ होता है प्रारंभ किया हुआ, जिसका फल चालू हो गया है वह कर्म, फल देना जो कर्म चालू कर दिया उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो फल देना चालू कर दिया है तो अब किसी की शक्ति नहीं कि फिर प्रारब्ध को मिटा सके, परंतु भगवान तो प्रारब्ध कभी हनन कर देते हैं। प्रारब्ध को ऐसे हम समझेंगे, जो जीवन में कर्म फल देने लगा है, जैसे ये देह मिला है ये कर्म का फल है, फलोन्मुख है, तो अगर शरीर छोटा मिला है या काला मिला है तो अब किसी भी उपाय से इस शरीर को गोरा नहीं किया जा सकता। चाहे रोज 100 साबुन भी लगाया जाए फिर भी काला शरीर काला ही रहेगा, और गोरा शरीर है खो, इस पर कितना भी कालिख पोती है वो काला नहीं हो पाता है। कितने विदेशी लोग समुद्र के किनारे धूप में सोसो करके अपने शरीर को लाल करना चाहते हैं, हम लोगों ने देखा है अपने आंख से, है ना महाराज? लेकिन फिर भी गोरे के गोरे ही रहते हैं। ये देखा जा सकता है, इसको प्रारब्ध कहते हैं। अगर छोटी छोटी आंख है तो इसको आप बड़ा नहीं बना सकते, ये प्रारब्ध है। कोई चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन कृष्ण को देखे ना, जन्म का कुबर था कुब्जा के पीठ पर, जन्म से ही 3 जगह से टेढ़ी थी, और अभी शरीर जब तक आत्मा शरीर में रहने वाला था तब तक ये शरीर बदलने वाला नहीं था, लेकिन मुकुंद ने केवल छुआ 2 अंगुली से और तुरंत ही वह सबसे सुंदरी स्त्री हो गई, सारी कुरूपता सारा टेढ़ापन चला गया। इसको कहते हैं प्रारब्ध को। प्रारब्ध है क्या चीज, इसको हम समझेंगे। जैसे जो लोग हवाई जहाज से यात्रा किए हैं वो समझ जाएंगे बहुत जल्दी। हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए पहले एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट पर फिर वेटिंग लाउंज होता है जहां रुकते हैं, वेटिंग करते हैं। जब तक वेटिंग में है तब तक आप कोई चीज बदल सकते हैं, जमीन का खरीद करके खा सकते हैं या कुछ भी, लेकिन जब फ्लाइट पर चढ़ते हैं तो आपका ही कुछ कर्म फल होता है जो संचित रहता है। संचित कर्म फल क्या है? कुछ लगेज जो डालते हैं पेंदी में उसके जहाज के, और प्रारब्ध क्या है? जो साथ में हैंड बैगेज में ले जाते हैं, वही खाने को मिलेगा, वही चीज काम में आएगी। कोई कहे और वो भी प्रारब्ध है, जो नहीं मिलेगा निश्चित है कि नहीं मिलेगा, वो पेंदी में जमा, आपका ही कर्म फल है। आप मान लीजिए उसमें रसगुल्ला रख दिए हैं या कोई पूरी रख दिए हैं और कहे बाईवान वाले को, हमको पूरी चाहिए, रोको आकाश में, रोको हमको चाहिए, तो रोक ही नहीं सकता है। जब तक एयरपोर्ट नहीं आएगा, जब तक विमान रुकेगा नहीं, तो पायलट की भी शक्ति नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है कि उसको दे सके, वो नहीं मिलेगा खाने को। और जो लिखा गया है, जो रखे हैं साथ में, वही केवल खाएंगे पिएंगे जो कुछ। अगर नहीं कुछ लिए हैं तब राम राम कीजिए, तो केवल हवा ही पिएंगे, सांस लेंगे, है ना। अगर अगर एयरलाइन वाले नहीं खाने को देंगे तो केवल सांस ही प्रारब्ध में है। तो जैसे उसको नहीं बदला जा सकता, अपने ही कर्म फल को आप ले नहीं पाएंगे, इसको प्रारब्ध कहते हैं। और उस समय कोई सोचे कि हम किसी स्टोर में जाकर के कुछ खरीद करके खा ले, भूख लगी है, नहीं नहीं हो सकता। अब वायुवान को किसी जमीन पर उतार करके और स्टोर में कोई ले जाएगा, नहीं, रुक ही नहीं सकता। ये प्रारब्ध है, चालू हो गया कर्मों का फल, तो भोगना ही पड़ेगा। तो प्रारब्ध चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही उच्छय होता है। पर भगवान का ऐसा संबंध है, भगवान अद्भुत चीज है, अद्भुत व्यक्ति है। कहते हैं कि मेरा जो स्मरण करता है, भक्ति करता है, उसकी तो बात दूर है, भक्ति करना बहुत बड़ी बात है, केवल स्मरण भी करे, जैसे कंस भय से करता था रात दिन, तो स्मरण भी करे तो उसका प्रारब्ध में क्षय कर देता हूं। थोड़ी काल के नाम मात्र भोगना पड़ता है। जैसे कंस को ऊंचे मंच से अखाड़ा तक केवल गिरना पड़ा, बस। ये क्या गिरना है। इस लीला के द्वारा भगवान दिखा रहे हैं। तो हरि सूरी जी ये भाव यहां दिख रहे हैं। और जदर्थम अवतारों में जद्योगाच जसांसपि प्रसितानि इति साध्वी ईशस्तत् कंसम अनयच्छयम्। क्षय का अर्थ होता है घर या वैकुंठ। भगवान ने सोचा कि जिसके चलते मेरा अवतार हुआ, मैं कंस के लिए अवतार लिया, और जिसके संबंध से मेरा जश सारे जगत में फैला, वह कंस कभी अधोगति में जाने लायक नहीं है, तो मेरे धाम में जाने लायक। तो भगवान अपने धाम ले गए, अपना स्वरूप देकर। तो उस समय दुंदुंभियां बजने लगी, नेदुर दुंध भया समम, दुंदुंभियां बजने लगी, अनेक बाजे बजने लगे। किसी को शोक नहीं हो रहा है कंस की मृत्यु से, और विद्वान बैठे थे उस सभा में, सब जान रहे हैं कि कंस भगवान के धाम में गया। तो आगे के श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, स नित्य दोद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन अदनवा विचरन स्वपन स्वसन ददर्श चक्रायुधमग्रतो जतः तदेव रूपम दुर्वापमवाप। प्रसंगात कंसस्य मोक्षम आह स इति। श्रील जी गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि अब प्रसंग से कंस को मुक्ति मिली, इसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। भव जन्म मरण से के बंधन से मुक्त हो गया कंस, भगवान के धाम में गया, सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान जैसा रूप। तो सह कंस जतः चूंकि नित्यदा उद्विग्न धिया, कंस नित्य ही भय से व्याप्त बुद्धि से श्री कृष्ण का स्मरण करता था, भय बस स्मरण करता था। जब से अजित भगवान ने देवासुर संग्राम में इसको मारा था, जब कालनेमी असुर था यह दैत्य, और भगवान ने चतुर्भुज रूप से सुदर्शन चक्र से इसको मारा था, तब से भगवान कोई भूल नहीं पाया, इतना भय रहता था। तो जब कंस शरीर मिला तब भी भय लगता था, देखा था भगवान के उस रूप को। कृष्ण को तो इसने कम देखा था, लेकिन कृष्ण के उस रूप को, चतुर्भुज रूप को इसने देखा था खूब ध्यान से, और भगवान ने इसका वध किया था। इतना भयभीत रहता था कि इस जन्म में भी, कंस नामा जन्म में भी, उद्विग्न धिया उच्च भीतया धिया, बहुत डरी हुई बुद्धि से नित्य भगवान का स्मरण करता रहता, नित्य यह स्मरण करता रहता था। या बैठ करके आसन लगा करके या मंदिर में जा करके, नहीं। पीबान, अदान, विचरण, स्वपान, श्वसन वा, पीते समय अदन, खाते समय विचरण, टहलते समय, कहीं जाते समय, अरे और तो और सोते समय, सांस लेते समय, मतलब सर्वदा नित्यम भय बस श्री कृष्ण का चिंतन किया करता। ऐसा वास्तव में चिंतन तो कोई भक्त भी नहीं करता है। जो कंस ने किया, बारंबार इस बात को कहा गया है, खाते समय, पीते समय, सोते समय कौन स्मरण करता है? सोते समय कार्तिक सपना में केवल कृष्ण को ही देखता था, वो हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के मुझे मारने आ रहा है, सपना में भी, अथवा सोने जाता था तब, लेटता था तब, श्वसन और तो और सांस लेता था उस समय भी, तो सांस तो 24 घंटा लेता ही था। श्वसन का यह अर्थ है कि कभी भूला नहीं, सब समय कृष्ण का भय बना रहता था, और भय बस उद्विग्न बुद्धि से, उद्विग्न मतलब बहुत अधिक भयभीत बुद्धि से स्मरण करता रहता था, खाते समय, पीते समय, विचरते समय, सपना देखते समय, सोते समय, सांस लेते समय, अग्रतः अपने आगे ही देखता था। कोई ये मत समझिए कि मन में स्फुरित होता था, सामने देखता था, उस स्फुरणा और दृष्टि दर्शन में अंतर नहीं है, सामने देखता था चक्र लिए हुए। जब से अजित भगवान को देखा था समुद्र के तट पर, तो वही दृश्य हमेशा नाचता रहता था, आता रहता था। उसी तम ईश्वरम श्रीकृष्णम, श्रीकृष्ण को ही ददर्श देखा करता था। इस कारण से जतः का संबंध है, इस कारण से तदेव रूपम अवाप प्राप्तवान तत्सारूप्य लक्षणा मुक्तिम अवाप इत्यर्थ। भगवान जैसा श्री विग्रह मिला चिन्मय दिव्य, उनके धाम में कंस मुक्ति प्राप्त किया। कंस इतना पाप किया था, सब अपराध किया था, कुछ भी किया था, लेकिन विषय प्रबल है। वास्तव में भगवान जो है, कोई कुछ भी किया हो, महापाप किया है, कुछ भी किया है, लेकिन संबंध उसके मन में कौन आ रहा है? कृष्ण आ रहे हैं। तो कृष्ण का ऐसा स्वभाव है कि वे उनका कोई स्मरण करे या उनका कीर्तन करे, उनको प्रणाम करे, उनका श्रवण करे, तो उसके सारे पाप ताप अपराध को क्षमा कर देते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण की सहज विशेषता, सहज गुण है। वे किसी के पाप ताप को नहीं देखते हैं। अगर वे देखे होते पाप को, तो पूतना कभी माता की गति प्राप्त करती? उन्होंने ये देखा ही नहीं कि ये विष लगा करके आई है, इसका हृदय बड़ा कर्कश है। बस उन्होंने देखा कि ये गोपी ड्रेस पहन कर आई, गोपी बन करके आई और ब्रज में आई है। भगवान ने भी विचार किया कि हमारे घर आई है। अरे किसी के घर कोई जाए तो एक सामान्य व्यक्ति भी आदर करता है किसी का, कि हमारे घर पर आया है, और यह भगवान के घर में आई है। भले बेचारी माया के कारण दूषित हृदय है, कुछ भी है, लेकिन हमारे घर में आई है और दूध पिलाने आई है, तो भगवान सचमुच ही अपनी मां बना लिए। ये भगवान की दया है। तो यही बात कंस के साथ है। भगवान ने कंस के दुर्विचारों को, कर्मों को देखा ही नहीं। वो तो अपने को देखते हैं कि हम कौन हैं। वे तो चिन्मय है ना, वे तो दीन बंधु है, पतित पावन है। उन्होंने अपने को देखा बस, भक्त के दोषों को कभी देखा ही नहीं। प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो, भक्त के या जीव मात्र के भी अवगुण को कृष्ण नहीं देखते हैं। सहज दयामय है, दयामय। इसलिए भगवान ने कंस को सारूप्य मुक्ति दिया। ऐसे इन सब श्लोकों की बहुत प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, बहुत देर होगी, लेकिन हमें कथा पूरी करनी है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। जब कंस मार दिया गया और अखाड़ा में इस तरह भगवान ने उसके शरीर को खींचा, तो तस्यानुजा भ्रातरोष्टौ कंकने ग्रोध कादयः अभ्यधावन अतिक्रुद्धा भ्रातुर निर्वेश कारिणः। यही है ना। तो जब कंस के छोटे भाइयों ने, जिनका नाम था कंक, नेग्रोध आदि, दो का नाम रख रहे हैं और छह का नाम नहीं रखे, आठ भाई थे, अष्टौ, कंस के छोटे आठ भाई थे, जब उन लोगों ने देखा कि हमारे भाई का वध कृष्ण कर दिए, तो कृष्ण को मारने के लिए, अपने भाई के ऋण से उऋण होने के लिए, भाई के वध का बदला लेने के लिए कृष्ण पर टूट पड़े, सब ओर से घेर करके, आठ व्यक्ति एक साथ आयुध लेकर के, हथियार लेकर के, और सब कृष्ण को घेर लिए मारने के लिए। तो इनको इस रूप में आते हुए देखा श्री बलराम जी ने, देखे कि ये सब अति रभसान, अति वेग में हैं, क्रोधित हैं और संयतान, हथियार लिए हैं अपने हाथ में। तो रोहिणी सुतः, रोहिणी नंदन भगवान श्री बलराम परिघ उठा करके, परिघ होगा भंगने के लिए लोहे का मूसल अथवा दांत जो है वो भी परिघ के आकार का है, गोला, हाथी दांत, कुबले पीड़ के हाथी दांत को लेकर के, और बस एक एक बार मारते गए, आठ बार केवल मारे, आठों वहीं मर गए, श्री कृष्ण को कुछ नहीं करना पड़ा। कंस तो बड़ा ही, कंस के आठों छोटे भाई वहीं मार दिए, श्री बलराम जी ने मारा। तब इसके बाद नेदुर दुंद भयो व्योमनी ब्रह्मे साध्या विभूत, आकाश में दुमदुम्भियां बजने लगी, अब देवता लोग खुल करके बाजा बजाने लगे। जब तक कंस जीवित था तब तक बजाने का साहस नहीं हो रहा था, अब खुल करके अपने स्वरूप से ही बाजा बजाने लगे। देवताओं के लोक में जो बाजा है वो तो अद्भुत है। तो बाजे बजने लगे और ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि जो भगवान की विभूतियां हैं, वे फूल बरसाने लगे। कंस के रंगशाला में भगवान कृष्ण पर, बलराम जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। किरंतस्तन पीता ससंसुन नंदित स्त्रियां भगवान की स्तुति करने लगे, जयगान करने लगे, और स्त्रियां नाचने लगी, अप्सराएं नाचने लगी। अब तक कंस के साथ जीते जी कोई नाच नहीं होता था, लेकिन अब सबको परम आनंद हुआ। यहां तक कि भगवान शिव को भी बहुत आनंद हुआ, ब्रह्मा जी को, ये सब भी आकर के फूलों की वर्षा करने लगे। तेषां स्त्रियो महाराज सुहृन्मरण दुखिता, लेकिन कंस आदि की, उसके भाइयों की और सबकी जो स्त्रियां थी, चूंकि विधवा हो गई, अपने पति आदि के मरण से बहुत दुखित हुई और छाती पीटती हुई, आंखों में आंसू बहाती हुई वहां आई अपने अपने पतियों के शव के पास, जहां पति मरे थे, तो वहां सब स्त्रियां आई। तेषां स्त्रियो, कंसादि नाम स्त्रियां, कंस की स्त्रियां, कंस के भाइयों की स्त्रियां और पहलवानों की स्त्रियां, वो सब वहां आई, बहुत दुखी थी अपने सुहृद के मरण से। कई स्त्रियां आ गई, किसी का भाई मरा था, किसी का कोई मरा था, किसी का पति मरा था, इस तरह से। तत्र अभी वहां आई रंगशाला में, वहां आई, कहां से आई, या तो रंगशाला में नहीं आई थी, अपने घर पर थी वहां से आई, अथवा रंगशाला में ही आई, जब पति आदि मर गए तो वे आकर के वहां हाय हाय करती हुई, छाती पीटती हुई और सिर पीटती हुई, शिरसाणी विनिंगनंत, अश्रु बिलोचना, उनके आंखों में आंसू छाए थे अति दुख से। सयानन वीर सज्जायाम पति नालिंग सोचती, वीर सज्जा में सोए हुए अपने पतियों का आलिंगन करके ले करके और विलाप करने लगी। बिलेपु सुस्वरम नार्यम विसृजन तो मुंह सोच, बहुत जोर से रोने लगी। सुस्वर का अर्थ जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। विलाप का अर्थ जानते हैं, जब कोई रोता है और कुछ कहते हुए रोता है, कोई वर्णन करते हुए कथा कहते हुए, तो उसको विलाप कहते हैं। केवल कोई रोवे तो उसको रुदन कहते हैं। लेकिन रोते रोते और बीच बीच में कुछ ब्रह्मा जी को गाली, चाहे ईश्वर को गाली, तुमने हाय दैवा तुमने ये किया ये किया, इस तरह कुछ कहते हुए रोना, इसको विलाप कहते हैं। तो पुरुष तो चुपचाप रो लेते हैं, लेकिन स्त्रियां जरूर कुछ कथा कहते हुए रोती हैं, देखा गया है, स्वभाव है। तो वे रो रही थी और अपने अपने पति के गुण को गा रही थी, आप बहुत दयालु थे, ये थे वो थे, हाय। ये सारा दोष दैव का है। जब कोई किसी के घर में मर जाता है तो सबसे पहले हाय दैवा, दैव मैंने ईश्वर, तुमने बहुत गलत किया, ये किया वो किया। जब जन्म दिया था, भोजन दे रहा था, जिला रहा था, तब आशीर्वाद नहीं दिए, तब ब्रह्मा जी को कोई आशीर्वाद नहीं, और मरने पर अब गाली देती। तो गाली तो सत्य लोग तक पहुंचती नहीं है, ब्रह्मा जी के कान में नहीं जाती है। कोई कितना भी रोवे गावे, उनको मारने का जो काम है मारते ही है ना। इतने लोग विलाप किए अपने स्वजनों के विषय में, लेकिन आज तक जमराज जी किसी को लौटाए कि अरे बहुत रो रहे हैं, छोड़ो उनको, रोइए गाइए कुछ भी कीजिए, लेकिन ये दुनिया है, भगवान ने बनाया है, कुछ भी हो चलता रहता है। जैसे ट्रेन में इतने यात्री बैठे रहते हैं, ड्राइवर का काम है ट्रेन चलाना। अब कोई बीमार होकर के हॉस्पिटल में जा रहा है, कि विवाह करने जा रहा है, कि जेल में जा रहा है, ड्राइवर को इससे कोई मतलब नहीं है। उसका काम है गाड़ी चलाना, ट्रेन चलाना। और विविध डिब्बों में कोई सोया हुआ जा रहा है, कोई झगड़ा करता हुआ जा रहा है, कोई बाथरूम में बैठा है, इतना देखने लगे ड्राइवर तो गाड़ी क्या चलाएगा। भगवान ये सृष्टि किए हैं, इसमें कोई सुखी है कोई दुखी है, अपने अपने कर्म का फल है। अब भगवान को कोई गाली दे कुछ भी करे तो उससे वो रुकने वाले नहीं है कि अब मारो मत, बड़ा गाली दे रहे हैं तो मारो मत, विलाप कर रही हूं। इस संसार का नियम है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो पापी हो, लेकिन जिसके प्रति ममता होती है उसमें गुण ही गुण देखता है आदमी। तो अलग अलग स्त्रियां अपने अपने पतियों का गुण गा रही हैं, अथवा कंस के पतियों का पहले बताया गया है, वो कह रही हैं, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणा नाथ वत्सला त्वया हते न निहता वयं ते स्वगृह प्रजा। ये विलाप प्रकार दिखा रहे हैं। हा नाथ इति एकत्वम स्वस्व पतिम प्रति पृथक, अपने अपने पति के प्रति कह रही हैं, अथवा मुख्य रूपेण कंस स्त्रीणा में वत्त दुखते, कंस की स्त्रियां विलाप कर रही हैं और कंस को कह रहे हैं, हे हा नाथ, हे हमारे रक्षक, हे हमारे पालक, प्रिय आप हमारे बहुत प्रिय थे, धर्मज्ञ आप परम धर्मात्मा थे, ओ तो इतना धर्मात्मा थे कि परम धर्मात्मा धर्मज्ञ, धर्म का इसका एक सारस्वत अर्थ भी है कि कंस धर्म जानता था लेकिन करता नहीं था। तो धर्मज्ञ का अर्थ धर्म जानने वाला, न तो करने वाला। जानता है धर्म क्या है लेकिन करता है टोटल अधर्म। जैसे दुर्योधन कहता था भगवान कृष्ण से, जान्याम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, जाना मैं धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जाना मैं धर्मम नचमे निवृत्ति, मैं जानता हूं क्या कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं है, और ये भी जानता हूं क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, लेकिन उससे मेरा मन हटता नहीं है। कोई है हृदय में जो हमको समझने नहीं दे रहा है, तो सारा दोष उस पर है, परमात्मा का जो हृदय में रहता है, वही परमात्मा संधि कराने गया थी और उसी से दुर्योधन ही बात बोल रहा है। यह धर्मज्ञ का अर्थ है हे धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले, आप अगर धर्म का पालन किए होते तो ये दशा नहीं हुई होती। ये मतलब सरस्वती जी का ये अर्थ है। और वैसे स्त्रियां तो अपने समझ से सोचती हैं कि परम धर्मात्मा थी, कंस से बहुत धर्मात्मा थी, अपने बहन के पुत्रों को काटते गए, धर्म की सीमा हो गई, बहुत धर्म थे। पर ये नियम है, चाहे कितना भी कोई खल हो, बदमाश हो, अगर अपना अपना व्यक्ति है तो उसमें गुण ही दिखाई देता है। हे धर्मज्ञ, हे करुणानाथ, करुणा विभाग के मिनिस्टर, दया विभाग के मैंने सर्वस्व, हे महादयालु वत्सल और स्नेही, सबसे स्नेह करने वाले, या हमसे स्नेह करने वाले, त्वया हतेन निहता, आपके मारे जाने से हम मर गई, और स्वगृह प्रजा, अब घर भी शून्य हो गया। प्रजा, प्रजा माने बाल बच्चे, कहां जाएंगे, कौन जिलाएगा, कौन खिलाएगा, सब सब मर गए, घर मर गया, बच्चे मर गए, स्वजन मर गए, हम मर गई, अब हम जी करके क्या करेंगे, बल्कि आपके साथ ही चले जाती। त्वया हतेन निहता, आप क्या मारे गए, हम ही मर गए। करुणानाथ, करुणाया नाथ ईश्वर, परम दयालु इत्यर्थ। हे वत्सल, हे परम स्निग्ध, त्वया विरहिता पत्या पुरीयम पुरुषर्षभ, न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सव मंगला। ये तो बात सही वास्तव में कह रहे हैं, परंतु अब जो शोभा होगी मथुरा की, भगवान कृष्ण रहेंगे तो अद्भुत शोभा होगी। लेकिन ये कंस के बारे में कह रहे हैं कि आपके बिना, त्वया विरहिता यम पुरी, आपके बिना ये मथुरा पुरी विधवा हो गई, अब आज से इसके सारे उत्सव, सारे फेस्टिवल समाप्त हुए, अब ऐसा रंगोत्सव कौन करेगा। तो राजा कंस थे तो सब करते थे, अब कौन करेगा, ये वो सोच रहे हैं। अब सारा उत्सव मंगल चाकचिक खत्म हुआ, हमारी जो दशा है वही मथुरा की दशा हो गई, अब उत्सव नहीं होंगे। उत्सव तो इतने सुंदर सुंदर होंगे कि जब भगवान कृष्ण वहां रहेंगे, नित्य ही उत्सव था, कृष्ण का दर्शन अपने आप में लाखों उत्सवों से बढ़ करके था, और पूरा धन बढ़ गया, सुंदर शरीर हो गया, वर्णन आएगा किस तरह से मथुरा के लोग सुखी हो गए। लेकिन कंस की स्त्रियां कह रहे हैं कि आपके बिना अब यहां कोई उत्सव नहीं होगा, कोई फेस्टिवल नहीं, सब सुनसान हो जाए। वो जानती थी कि मथुरा में जो भी उत्सव है सब कंस के चलते हैं, लेकिन कोई मरे जिए संसार में उत्सव चलता ही रहता है। इतने बड़े बड़े लोग मर जाते हैं तो इसके बाद क्या दिल्ली सुनसान हो जाती है, फिर भी उत्सव चलते ही रहते हैं, विविध प्रकार के बाजे गाजे उत्सव चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष आदमी, राजा इस समय जी रहा है तो उत्सव है, इसके बाद सब शोक में डूब जाएंगे। अरे नाच गान तमाशा क्या क्या चलता ही रहता है, सारे रेस्टोरेंट में खाने वालों की भीड़ लगी रहती है ना। जैसे थोड़े है कि अब रेस्टोरेंट होटल सब बंद कर दिया गया क्योंकि ये व्यक्ति चले गए, अब क्या है? सब चलता रहेगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि हम हैं तो कर रहे हैं, हम हैं तो कर रहे हैं, कोई मरेगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, संसार चलता रहेगा। इन कंस की स्त्रियां सोच रहे हैं कि मथुरा का सारा फेस्टिवल चला गया, अब वीरान हो गई। लेकिन एक बात सत्य बोल रही है कि अनागसाम तुम भूता नाम कृतवान द्रोह मूल बराम। पति देव, तुम निरपराध लोगों के प्रति बहुत भारी द्रोह किए। अब याद ध्यान में आ रहा है कि वसुदेव जी को जो तुमने कारागृह में बंद किया, उनके पुत्रों को मारा, और देवकी जैसी निरपराध स्त्री को इतना सताया, उसके पुत्रों को मारा, उसी का एक फल है। निरागसाम तुम भूता नाम कृतवान द्रोह मूल बड़ा। निरपराध निर्दोष प्राणियों के प्रति तुमने भयंकर द्रोह किया। तेने माम भो दशा नी तो भूत द्रोह को लभे सुन। इसी से तुम्हारी आज ये दशा हुई है। जीवों को सताने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति प्राप्त कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है? अगर सुख पाना है तो दूसरों को सुख देना चाहिए। दूसरों को दुख देने वाला कैसे सुखी हो सकता है? तो तुमने अपने जीवन में दुख दिया है सबको, और निरपराध निर्दोष प्राणियों को दुख दिया है। घर की स्त्रियां बोल रही हैं, जो जैसा होता है उसके बारे में सही सही भी बयान होने ही लगता है। भले करुणानाथ वत्सल धर्मज्ञ कह रही हैं, तब यहां क्या क्यों कहते हैं कि आप निरपराध प्राणियों को सताए? असली बात यही है। रावण की स्त्रियां भी ऐसे रावण के विषय में कहती थी, ते तव सिर भुज जम्बुक खाही राम विमुख अस अनुचित नाही। हे पति देव, आज लंका के मैदान में आपके सिर को, हाथ को, शरीर को जम्बुक सियार खा रहे हैं, राम से विमुख रहने वाले के लिए कोई अनुचित नहीं है, ठीक हो रहा है। मरने के बाद रावण के विषय में कहते हैं कि ठीक हो रहा है, राम विमुख अस अनुचित नहीं। तो आज कंस की स्त्रियां यहां कह रही हैं कि तुमने निर्दोष प्राणियों को सताया है, इसी से आज दशा है। इस बात से सबको सावधान होना चाहिए। वास्तव में किसी को शक्ति है, राजा है या कोई मंत्री है, किसी बड़े पद पर है, उसको चाहिए कि पूरी शक्ति लगा करके जीवों को सुख दे, कभी दुख न दे, नहीं तो इस दुख का कुफल आ जाएगा सामने, और नरक में तो गिरना ही है। इस जीवन में भी कोई भयंकर दुख आ जाता है, मरने के बाद तो नरक निश्चित है, वो तो रिजर्व है, और इस जीवन में भी कोई भयंकर धन हानि या दुख, शरीर की क्षति आदि देखी जाती है। अगर सुख पाना है तो दूसरों को सुख देना चाहिए। एक दोहा में एक कवि ने कहा है कि सारे पुराण में, सारे शास्त्र में बस दो ही वचन है, सुख दिन है सुख होत है, दुख दिन है दुख होय। अगर दूसरों को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। इतना प्रचंड, इतना बलवान राजा कंस खेल खेल में मार दिया गया, और उसके सारे स्वजन भी मार दिए, भाई भी मार दिए गए, पहलवान मार दिए गए, उसकी सेना मार दी गई, सभी मार दिए। तो तुमने निरपराध प्राणियों को दुख दिया था, खास करके देवकी के पुत्रों का मारण तुमने किया था, उनको मारा था, उसका दूषित फल आ गया सामने। वही कंस आज मारा गया है, देवकी के पुत्र के द्वारा ही मारा गया है, और देवकी के पुत्रों को, सब पुत्रों को इसने मारा था। कितना वर्ष जेल में रखा देवकी को, अपने पति के साथ विवाह के दिन ही जेल में बंद की गई। जिस दिन विवाह हुआ देवकी का, अपने पति के साथ इस तरह से दुख भोगी थी। तो ऐसी देवकी को या किसी भी निरपराध प्राणी को दुख देने वाला तो तुम ये जो दुख भोगे हो बिल्कुल ईश्वर ने उचित किया। सर्वेशा में भूता नाम ऐसा ही प्रभुवाप्य गुप्ता चौतद अधवशाई न क्वचित सुख में रहते। तो ये प्रश्न हुआ उनके सामने, देखिए स्त्रियां भगवान को सामने देख करके बोल रही हैं, भगवान खड़े हैं, जितनी भी मामियां हैं मामी लोग विलाप कर रहे हैं, तो भगवान दूर नहीं हो गए, वे आए उस परिवार के हैं, भांजा हैं, तो परिवार में दुख आ गया है तो इस दुख में भी वे भाग लेंगे, तो खड़े हैं। तो वे कहती हैं जितने प्राणी हैं सबको जन्म देने वाले, सबका विनाश करने वाले और सबके रक्षक, ऐसा ही यही श्री कृष्ण है, यही परम ईश्वर है। वो स्त्रियां बोल रही, भगवान का ज्ञान छिपा नहीं रह सकता था। एक तो लोग बोलते थे सब जगह, ये भी सुनी थी सभा में बोलते थे, कई बार पहले कथाएं होती थी, कृष्ण के बारे में जानती हैं स्त्रियां, कहती कि यही ईश्वर हैं और समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं, सबका पालन करते हैं, रक्षक हैं। जो इनका अध्यवायी है, अवध्यायी है, जो इनका अनादर करेगा, जो इनका अनादर करता है, जो श्रीकृष्ण का आदर नहीं करता है, न क्वचित सुख में देते, वो कभी भी सुख नहीं पा सकता है। कंस के मृत्यु के बाद उसकी स्त्रियां कमेंट दे रही हैं, विचार कर रही हैं, जो श्रीकृष्ण का अनादर करता है, भजन नहीं करता है, कभी सुख नहीं पा सकता, कभी सुख से नहीं रह सकता। कंस कितना जल्दी मारा गया है, अभी 3 दिन पहले प्लान कर रहा था कि कृष्ण बलराम को ऐसे लाइए, मारेंगे, ऐसे करेंगे, जरासंध मेरा ससुर है, द्विज मेरा मित्र है, बाणासुर मेरा साथी है, ये है वो है, मैं सबके द्वारा जादवों को मारूंगा, पृथ्वी जादव शून्य हो जाएगी, उसके बाद मैं सुखी रहूंगा, सुख भोगूंगा, ये सब प्लान किया था। और अक्रूर जी से ही कहा था सब कि आप जाइए दोनों को लाइए, लाया गया और इसके बाद तुरंत चला गया। कृष्ण से विमुख रहने वाला कभी सुख नहीं पा सकता है, कृष्ण का भजन करने वाला ही सुख पा सकता है। ऐसा यहां पर ऐसा कहते श्री कृष्ण, ये जो श्री कृष्ण है, यदि भगवान वहां खड़े थे सांत्वना दे रहे थे सभी को, लेकिन वो तो रोती जा रही थी और इस तरह से कहती थी श्री सुकवच राज जोषित आश्वास्य भगवान लोक भावन जमाहुर लोक की संस्थान हता नाम समकारयत। राज जोषित राजा कंस की पत्नियों को, अपने मामियों को भगवान सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे, क्योंकि लोक भावन ये लोगों को समृद्ध रखना चाहते हैं, पोषण करना चाहते हैं सबको। एक आवश्यकता थी कि कंस को मार दिया जाए, तो भगवान ने मारा क्या, व्यक्तिगत दृष्टि से तो उसको सारूप मुक्ति दिया, अब रही जनता की बात, तो जनता में अब सुदृढ़ शासन की स्थापना होगी, उग्रसेन जी राजा बनेंगे और स्वयं भगवान उनके साथ रहेंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा। जैसे बात समझा रहे हैं, समझाने में भगवान कहते हैं कि ये होना था, इसको टाला नहीं जा सकता था, यही होनहार थे, कई बार समझाने की कोशिश किया गया, ये किया गया, लेकिन जो होना है हो करके रहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, अब जो अपने पति के विषय में कर्तव्य है वो कीजिए। तो उनको समझाए भी, समझ गए, उनका शोक दूर हुआ। और जो लौकिकी संस्था होती है, गति होती है, मतलब शरीर का दाह संस्कार कराना और सब नियम, तो इसके लिए सबको भगवान ने श्मशान भेजवाया, सबको ढंग से श्मशान में भेजवाया और दाह संस्कार आदि किया गया। अब इसके बाद श्री भगवान अब कारागृह में अपने माता पिता को छुड़ाने जाएंगे, ये प्रसंग हम दोपहर के बाद करेंगे।